हरे कृष्ण भक्त भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आप यहाँ पे आए हैं कुछ सोच के साथ आए होंगे, एक्सपेक्टेशन के साथ आए होंगे, तो उनको जानना चाहिए हम सभी क्या एक्सपेक्टेशन होती हैं, क्या होनी चाहिए। वैसे तो कहा जाता है कि जो मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी होता है वो बिना लक्ष्य के कुछ नहीं करता। जो मूर्ख व्यक्ति भी होता है वो भी कोई ना कोई लक्ष्य होता है कोई भी कार्य के पीछे। तो जब मूर्ख व्यक्ति का भी कोई ना कोई लक्ष्य होता है तो निश्चित रूप से बुद्धिमान व्यक्ति का भी लक्ष्य होता होगा। परंतु आज हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि संसार की बहुत बड़ी विडंबना है कि हमें पता ही नहीं है कि हम चाहते क्या हैं और कौन चाहता है हमें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। मान लीजिए अगर कोई ट्रेन पे जाए वो भी बिना टिकट लिए और उसके बाद कोई टीटी आके पूछे कहाँ जाना है आपको, वो बोले पता नहीं, कहाँ के कह दूं आपको, बोले पता नहीं, तो कितनी हैरानगी होगी हमें जान के कि सफर कर रहे हैं और हमें यही नहीं पता कि कहाँ जाना है। तो उसी प्रकार से हम सब के सब लोग यात्री हैं, पैसेंजर हैं, ट्रेवलर हैं, सब के सब लोग। हम भी ट्रेवलर हैं, यात्री हैं, इंद्र भी एक यात्री हैं, सूर्य देव भी यात्री हैं, चींटी भी यात्री है, कीड़े मकोड़े हम सब यात्री हैं। यात्री हैं मतलब हम यात्रा कर रहे हैं। यात्रा कर रहे हैं मतलब हमारा कोई लक्ष्य होगा। यात्री शब्द का अर्थ सिद्ध नहीं होता यदि कोई लक्ष्य ना हो। तो हम सब लोग चीटी से लेकर ब्रह्मा तक सब लोग यात्रा कर रहे हैं। हम सब लोग कहीं जाना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं। तो हमें जानना चाहिए कि हम क्या पाना चाहते हैं। कई बार देखा जाता है कई लोग हमारे पास आके बोलते हैं कि प्रभु जी सब कुछ है, धन है, घर में सब कुछ सेटल्ड है, बस इतनी ऐसा लग रहा है कि किसी चीज की तलाश है जो नहीं मिल रहा, कुछ चीज ऐसे जो कि नहीं मिल रहे। हम सोचते हैं कि उनसे ये पूछना चाहिए कि किसको तलाश है, किसको तलाश है और किसकी तलाश है। ये दोनों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। किसको तलाश है? इस संसार में सबको तलाश है, पर कोई अपने ऊपर जानना चाहे पूछे अपने आप से किसको तलाश है भाई, किसको और किस चीज की तलाश है। तो ये दोनों प्रश्नों का उत्तर हमें जानना चाहिए। कोई व्यक्ति बोल सकता है अभी मेरा धन नहीं है तो मैं चाहता हूँ कि 100 करोड़ रुपए मेरे पास हो जाए। तो उनसे पूछा जाए तो क्या आपको धन की तलाश है? दोबारा सोचो, धन की तलाश है? नहीं, धन से जो सुख मिलता है उसकी तलाश है। कोई बोले अगर खाना अच्छा खाना है तो क्या आपको अच्छे खाने की तलाश है? नहीं नहीं नहीं, अच्छे खाने से जो सुख मिलता है उसकी तलाश है। उसी प्रकार से कोई भी चीज पानी देखेंगे तो पानी देगी आगे तक वस्तुएं चाहते हैं, मोबाइल चाहते हैं या कुछ भी चाहते हैं, बड़ी गाड़ी वगैरह, उसकी तलाश नहीं है। उससे जो सुख मिलता है वो हमें चाहिए। तो जाने अनजाने में हम ये प्रयत्न कर रहे हैं कि हमें सुख मिले, आनंद मिले, ऐसा आनंद जिसकी कोई सीमा ना हो, जिसके बारे में दुख दोबारा ना मिले। ये सब इसकी कामना हम कर रहे हैं जाने अनजाने में। और प्रश्न से उत्तर कामना कौन कर रहा है? हम मनुष्य कामना कर रहे हैं क्या? नहीं, चींटी भी कामना कर रही है, पेड़ भी कामना कर रहे हैं, देवता भी कामना कर रहे हैं, कुत्ते, बिल्ली, सुअर सभी कामना कर रहे हैं। क्या ऐसी पृथ्वी लोग पे कामना कर रहे हैं? नहीं 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 नहीं, अन्य लोगों पे भी सब लोग, सभी लोग एक ही कामना कर रहे हैं, हमें आनंद चाहिए, खुशी चाहिए, पीस चाहिए। और सभी का एक लक्ष्य है कि सबको आनंद चाहिए। और सब में से 80 लाख योनियों में ये जान ही नहीं सकते कि किसको आनंद चाहिए। जैसे आप पशु से बोलो, मानव की नहीं भी समझ सकते हो, कि भाई कुत्ते से बोलो, कुत्ते तुम्हें क्या चाहिए? वो बोलेगा कि मुझे आनंद चाहिए। अच्छा, तो तुम किसी के साथ सड़क पे भी लग जाते हो तो किसके आनंद के लिए? हाँ। अच्छा, खाना खाते हो तो उधर किस लिए? आनंद के लिए। वो बोलेगा मुझे आनंद चाहिए। अगर भाषा समझ पाए, चींटी भी यही बोलेगी, पक्षी भी यही बोलेंगे। और उनसे पूछे किसको आनंद चाहिए, उनसे पूछे मुझे आप कौन हो? बोलेगा मैं कुत्ता हूं। तो वैसे गधा बोलेगा मैं गधा हूं, इंसान बोलेगा मैं मनुष्य हूं, देवता बोलेगा मैं देवता हूं। तो क्या आपकी यही पहचान है? आपकी यही पहचान है क्या? नहीं, आपको आनंद चाहिए। आप कहां पे होगी? आप कहां पे हो? आप इस संसार में होगी। इसको भौतिक संसार कहता है, कहा जाता है। भौतिक संसार मतलब जो पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश से बना हुआ है, ये भौतिक संसार है। ये पांच तत्वों से बना हुआ है। अच्छा, और आपका शरीर किससे बना हुआ है? वो भी पांच तत्वों से बना हुआ है। तो फिर आनंद किसको चाहिए? आपका शरीर कौन से पांच तत्वों से बना हुआ है? पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। तो आपके हाथ को आनंद चाहिए? नहीं। आपके कान को आनंद चाहिए? नहीं। इनसे तो आनंद चाहिए, पर इन्हें आनंद नहीं चाहिए। ये तो जड़ है, ये मैटर है, ये जड़ है। तो आनंद फिर किसको चाहिए? आपका शरीर किससे बना हुआ? पृथ्वी को आनंद चाहिए क्या? हमारा शरीर पांच तत्वों से बना है, पृथ्वी को आनंद चाहिए? नहीं। और किससे बना है शरीर? जल। जल को आनंद चाहिए? नहीं। अग्नि को आनंद चाहिए? नहीं। तो फिर आनंद चाहिए किसको? तो हम वेद शास्त्रों में जाते हैं और अपने बुद्धि का प्रयोग करते हैं तो हम पाते हैं कि हम जो हैं इन सब पांचों तत्वों के कुछ अलग हैं। हमें आनंद चाहिए। हम कौन हैं? हम चिन्मय तत्व हैं, हम आत्मा हैं, और हमें आनंद चाहिए। अच्छा, अभी हम आनंद कहां पे ढूंढ रहे हैं? इस भौतिक संसार में। अगला प्रश्न होता है, क्या ये भौतिक संसार नश्वर है या टेम्परेरी है या परमानेंट है? शास्त्रों में जाते हैं पता चलता है कि भौतिक संसार की रचना होती है, कुछ समय तक रहता है और उसके बाद संसार का प्रलय हो जाता है, ये संसार ध्वंस हो जाता है। महाविष्णु एक बार श्वास लेते हैं उसमें अनंत ब्रह्मांड आ जाते हैं, और वो श्वास वापस लेते हैं तो संसार खत्म। पर क्या हम खत्म होते हैं? कृपया ध्यान दीजिए एक बात पे, क्या हम खत्म होते हैं? नहीं। यही बात शंकराचार्य ने भी कही है, एको नारायण आसीन। सृष्टि के प्रारंभ में केवल एकमात्र नारायण भगवान श्री कृष्ण थे, आदि नारायण, और कोई भी नहीं था। एको देव नित्य लीला अनुरक्तो, और वो जो देव है सर्वश्रेष्ठ, वो नित्य लीला में रहते हैं अपने धाम में। पर तस्मात् भाव अन्य व्यक्त व्यक्ता सनातन। तो इससे भी अलग एक जगत है जो प्रलय होने के बाद जिसकी जिसका प्रलय नहीं होता, वो हमेशा सनातन रूप से विद्यमान रहता है। इसको स्पिरिचुअल वर्ल्ड कहा जाता है, आध्यात्मिक जगत कहा जाता है। तो जब इस भौतिक संसार की रचना होती है, कुछ समय तक रहता है, फिर प्रलय हो जाती है, और हम फिर भी रहते हैं क्योंकि हमारा ध्वंस नहीं होता, हमारा नाश नहीं होता। तो इससे पता चलता है कि हम किसी और जगत के प्राणी हैं, हम चिन्मय तत्व हैं, हम स्पिरिचुअल हैं नेचर में, हम आध्यात्मिक हैं, हम लोग ट्रांसेंडेंटल हैं, स्पिरिचुअल हैं। हमारा नाश कभी भी नहीं होता, कभी भी नाश नहीं होता, और हमें आनंद चाहिए। ये तत्वता समझना बहुत जरूरी है कि हम हर समय इस संसार का एक एक व्यक्ति, इस संसार का नहीं पूरे ब्रह्मांड का एक व्यक्ति, ये भी नहीं सारे ब्रह्मांडों के सारे जीव निरंतर प्रतिक्षण 24 घंटे एक ही वस्तु की कामना कर रहे हैं, आनंद की खुशी की। और हमें यही नहीं पता कि कामना कौन कर रहा है, कामना करने वाला व्यक्ति कौन है। कामना करने वाला व्यक्ति आत्मा है, आत्मा, हम आत्मा है। हमारे ये आत्मा नहीं है, हम आत्मा हैं। तो आत्मा सुख चाहती है। तो पहले प्रश्न का उत्तर हमें पता चला कि आत्मा चाहती है वास्तव में सुख। अच्छा, अब हम इस संसार में हैं तो हम इस संसार में सुख चाहते हैं। तो हम बुद्धि के स्तर पे जानेंगे क्या इस संसार में सुख प्राप्त हो सकता है। इस संसार से पहले भी जो थे भगवान श्री कृष्ण थे, नारायण थे, तो बताया जाता भगवान को ब्रह्म बोला जाता है, परब्रह्म। गोपाल का अपनी विषय बताया जाता है, यो अस्तु परब्रह्म गोपाल, वो जो परब्रह्म है गोपाल है, वो सृष्टि से भी पहले थे, सृष्टि से भी पहले थे, और हम भी उन्हीं के अंश हैं, ये शास्त्रों वेदों द्वारा पता चलता है। तो अब हमें आनंद चाहिए, तो हम आनंद कैसे प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं,
भौतिक वस्तुओं में।
हम ये टेक्निकली जानेंगे क्या भौतिक वस्तुओं में आनंद प्राप्त होने की कोई संभावना भी है क्या। एक तो शास्त्रों में बोल दिया कि भाई तो खा जो शाश्वत में, हम तो कहते हैं नहीं, हमें तो बहुत अच्छा लगता है कि हम तो मेकअप लगाते हैं हमें अच्छा लगता है, हम एक्सरसाइज करते हैं हमें अच्छा लगता है, हमारा बॉयफ्रेंड होता है हमें अच्छा लगता है, गर्लफ्रेंड, ये ऐसा भी कोई बात तो है नहीं, कोई ज्यादा ही बोला जा रहा है कि दुखों का संसार, ऐसे ही निराशावादी है, पेसिमिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू। तो ब्रह्म सूत्र में बताया गया ब्रह्म की परिभाषा, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, जो ब्रह्म है यही आनंद स्वरूप है, रस स्वरूप है, और ये विज्ञान है, विज्ञानमय है, भगवान जो है विज्ञान है, ये कोई भावुकता का विषय नहीं है, भगवान विज्ञान है। तो हम जानेंगे विज्ञानता पूर्वक कि वास्तव में क्या संसार में सुख प्राप्त कर सकते हैं। हम निरंतर एक चीज की के पाने का प्रयत्न कर रहे हैं, क्या वास्तव में प्राप्त कर सकते हैं सुख, आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। यह संसार किन चीजों से बना हुआ है, पांच तत्वों से। कौन से पांच तत्व हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु व आकाश। अच्छा, तो आप चिन्मय तत्व हैं, तो आप किससे आनंद चाहते हो, पृथ्वी से, मिट्टी से, आपको मिट्टी आनंद देगी, कंफर्म होगा नहीं देगी, ठीक है, क्योंकि आप चिन्मय हो। नंबर दो, अग्नि, आपको अग्नि आनंद देगी, वो भी नहीं देगी, वो भी कैंसिल हो गया। पृथ्वी अग्नि जल, जल हमें आनंद देगा, जल भी नहीं देगा, वायु अग्नि आकाश, ये पांचों तत्वों से हमें कोई भी आनंद नहीं दे सकता, क्यों, क्योंकि हम स्पिरिचुअल हैं। ये संसार किससे बना हुआ है, इन पांच तत्वों से, इसका जो भी कॉम्बिनेशन है वो आप इन्हीं पांचों तत्वों का कॉम्बिनेशन है संसार में, आप जो भी देख रहे हैं। कोई बोलेगा कि मैं, मेरे को बॉयफ्रेंड से आनंद मिलेगा, अच्छा वो किससे बना हुआ है, अरे कमाल है, वो भी मिट्टी का पुतला है, कमाल है, कमाल है, नहीं तो आपको कैसे आनंद मिलेगा मिट्टी से, प्रश्न जायज है ना। हाँ, तो यही सबसे बड़ी विडंबना है संसार की, और इरेशनल अटैचमेंट टू मैटर, इरेशनल, इसका कोई लॉजिक नहीं है। आप आत्मा हो, हाँ, इसका मतलब आध्यात्मिक हो, हाँ, तो आपकी खुराक भौतिक कैसे हो सकती है, आपकी जो डाइट है वो मेटीरियल कैसे हो सकती है जो आप टोटली स्पिरिचुअल हो। आप किसी भी तरीके से बताएं कि आपको मिट्टी से कैसे सुख मिल सकता है, बताइए, या हवा से कैसे सुख मिल सकता है, या अग्नि से, या पानी से, ये सब इसी से बना हुआ है, जो भी आप कुछ दे रहे हैं, चाहे आपका शरीर हो, आपके माता पिता का शरीर हो, मनु का शरीर हो, इंद्र का शरीर हो, हालांकि ब्रह्मा जी का जो शरीर है वो भी पांच तत्वों से मिट्टी से बना हुआ है, कमाल की बात है, और हम मिट्टी के अंदर हम सुख ढूंढ रहे हैं। यही कारण है कि मैं आज तक सुख नहीं मिला और भविष्य में भी नहीं मिलेगा निश्चित रूप से। अब आत्मा जो है वो चिन्मय है, वो मिट्टी में कैसे सुख प्राप्त कर सकती है, और हमारी कामनाएं भी क्या होती हैं, हमारी कामना होती है कि हम बड़ी गाड़ी चाहते हैं, अच्छा वो किससे बनी है, वो भी मिट्टी से बनी है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, आपके बॉयफ्रेंड भी मिट्टी से बने हैं, आपकी गाड़ी भी मिट्टी से बनी, और क्या चाहते हो, हम ज्वेलरी चाहते हैं, डायमंड, अच्छा मतलब कार्बन से सुख चाहते हो, आपको कार में सुख देना शुरू कर देगा। और फिर किसी से बोलो कि आप थोड़े बुद्धू हो, क्या कहा, सुनना नहीं चाहते हैं उसकी तारीफ को। अब आप ये सोचते हो कि आपको कार में सुख दे देगा, कमाल की बात है। ये संसार और संसार में रहने वाले सभी लोग इतने इतने विचित्र हैं कि वास्तव में सभी को म्यूजियम में रखना चाहिए, ये देखने के लिए हम सब लोग। हमारी बेवकूफियां के ऊपर तो प्रति सेकंड किताब लिखी जा सकती है, आध्यात्मिक जगत के अंदर लिखी जा सकती है, हमारी बेवकूफियों में भी प्रति क्षण नई किताब लिखी जा सकती है। अच्छा, गाड़ी चाहते हो, टीन का डब्बा, अगर आपको घी के टीन के डब्बे में बिठा दें तो क्या सुखी हो जाओगे? नहीं। तो ये दूसरे मेरे डब्बे में कैसे सुखी हो जाओगे? नहीं हो सकते। हाँ अच्छा, तो ज्वेलरी से हो जाओगे? नहीं, ज्वेलरी से भी नहीं होगी, क्यों? वो कार्बन है, डायमंड कसा हुआ कार्बन। और देखा जाए है तो पत्थर ही, पत्थर तो पत्थर ही होता है, कोयला है वो भी पत्थर है, डायमंड है वो भी पत्थर है, तो पत्थर लटका के क्या हम सुखी हो जाएंगे? कमाल की बात है, कितनी बारी पत्थर लटकाए हैं हमने तो क्या उससे सुख कभी प्राप्त हुआ है हमें? अगर हमसे आज तक प्राप्त नहीं हुआ तो अब भी प्राप्त नहीं होगा। हम स्पिरिचुअल है प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, हमारी डाइट स्पिरिचुअल है, हम जो भी चाहते हैं वो स्पिरिचुअल है नेचर में। इसी प्रश्न का ढंग से उत्तर हम नहीं जान पाए अनंत जन्मों से, और अनंत जन्मों से दुखी है हम लोग, हमें सुख प्राप्त नहीं हो रहा। कोई भी ये नहीं बोलेगा कि हाँ हमें कभी सुख चाहिए और कभी दुख चाहिए, नहीं, हम हमारे को हमेशा सुख चाहिए। तो हमेशा सुख आपको तभी मिलेगा जब आप सही स्थान पे होंगे। आपको उदाहरण दे, मछली होती है, मछली को पानी में सुख मिलता है, उसे पानी से हटा के आप डायमंड के ही घर में बना के रख दो तो क्या उससे खुश हो जाएगी मछली? नहीं खुश होगी, क्योंकि वो आप एक बार समझने की कोशिश कीजिए, जो भौतिक है मटेरियल बॉडी है जिसकी, उसको एक मटेरियल स्थान से उठा के दूसरे स्थान पर रख दो तब खुश नहीं होता। और हम जो कि टोटली स्पिरिचुअल है, हमारे आध्यात्मिक जगत से हम इस संसार में आ गए, तो हम कैसे खुशी प्राप्त कर सकते हैं? आप भौतिक संसार में एक जगह से आपको उठा के दूसरी जगह में रख दो तब आप मर जाओगे, तो हम तो टोटली स्पिरिचुअल हैं, हम तो बिल्कुल फॉरेन जगह में हैं, ये जगह अलग है, हम लोग फॉरेनर हैं, हम लोग यहां के नहीं हैं। तो जब आप लोगों ने यह भी सुना होगा कि कई बार विदेश से जब लोग भारत में आते हैं तो अलग प्रकार का भोजन खाते हैं तो उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, वो कहते हैं हम वापिस अपने स्थान में जाएंगे तो ही ठीक हो सकते हैं। जब भौतिक संसार में आपको इधर से उठा के इधर रखते हैं तो आपका सुख जीरो हो जाता है। तो हम तो आध्यात्मिक जगत के प्राणी हैं, वी बिलोंग टू द इटर्नल रेन, वी आर रेजिडेंट ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, तो बिल्कुल अलग जगह पे मिट्टी के अंदर आ रहे हैं और मिट्टी में सुख ढूंढने की कामना कर रहे हैं, मिट्टी में पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं कागज इकट्ठे करने में, जिसको करेंसी कहा जाता है। तो अगर देखा जाता है 60-70 साल की उम्र होगी है, प्रॉपर्टी करोड़ों की है, फिर भी कागज इकट्ठे कर रहे हैं मंत्र दम तक। अच्छा, कागज से सुख मिलेगा आपको? नहीं, कागज से कुछ खरीदोगे उससे सुख मिलेगा। ओके अच्छा, और क्या क्या जिन्हें सुख मिलता है? मोबाइल, टीम का छोटा डब्बा, जिससे कैसे सुख मिल सकता है कोई बताए? मैं आता हूं, मैं क्या करूं उसका, इससे कैसे सुख मिलेगा? फिर बोले नहीं जी, हमारा तो 3 रूम का सेट है, मुझे बंगला चाहिए। अच्छा, बंगले से सुख मिलेगा आपको? बंगला किससे बना हुआ है? मिट्टी से। फिर वही बात, घूम फिर के मिट्टी पे, हम लोग मिट्टी से इतने आकर्षित है, तो मिट्टी से कैसे सुख मिल सकता है? जब एक पदार्थ से सुख नहीं मिल सकता, चाहे पृथ्वी हो, चाहे अग्नि हो, चाहे जल हो, या वायु आकाश, तो इसी के कॉम्बिनेशन है सारा संसार, चाहे वो आपकी बॉडी हो, चाहे वो किसी की भी बॉडी हो। तो हमें जानना चाहिए कि जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हम सूंघते हैं, जो हम स्पर्श करते हैं, इससे भी बाहर एक जगत है, इससे भी परे कुछ है। दिस मेटीरियल वैरायटी इज नॉट द अल्टीमेट ट्रुथ, दिस इज नॉट द फाइनल ट्रुथ, दिस इज नॉट एवरीथिंग। ये मेटीरियल वैरायटी सब कुछ नहीं है, इससे पार भी बहुत कुछ है। और हम वहां से आए हैं, ये तो खत्म हो जाएगा, मिट्टी तो थोड़े दिनों बाद खत्म हो जाएगी, सारे देवता खत्म हो जाएंगे, पर हम रहेंगे तब भी। आपको मालूम है कि हमारे शरीर में कई प्रकार के प्राणी रहते हैं, मालूम है, कई प्रकार के प्राणी रहते हैं, और उनके लिए उन्होंने शरीर के बाहर कुछ नहीं देखा, वो हमारे शरीर में ही पैदा होते हैं, वहीं पे मेंटेनेंस होती है, वहीं पे बच्चे पैदा करते हैं, वहीं पे घर बनाते हैं, वहीं पे खाते हैं, पीते हैं, सेक्स करते हैं और मर जाते हैं। उनके लिए एक ब्रह्मांड है, यूनिवर्स। इस यूनिवर्स के परे क्या है अगर हमसे पूछोगे, कुछ भी नहीं है, यही सब कुछ है। ठीक वही स्थिति है हमारी, हम भी क्या सोच रहे हैं कि इसके परे और कुछ नहीं है। सोचिए, हम भी बिल्कुल उसी एमीबा, उसी बैक्टीरिया की भांति हैं जो सोचता है कि शरीर के बाहर कुछ नहीं है। हम लोग सोचते हैं कि यहाँ पे हम लोग कोई पत्नी प्राप्त हो जाएगी या कुछ भी धन ज्यादा मिल जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। कृपया करके ठंडे दिमाग से अपनी जो आपकी धारणा है उसको बाहर निकाल दीजिए थोड़ी देर के लिए। लॉजिकली सिर्फ आप खुद सच्चे मन से सोच के बताइए कि हमको सुख कैसे मिल सकता है संसार में। भूल जाइए शास्त्रों को, मिट्टी अग्नि चरण वायु आकाश यही है संसार, इंद्र का जगत भी यही है, हेवन नर्क भी इसी से बना हुआ है, सब कुछ इन्हीं तत्वों से बना हुआ है, तो कैसे सुखी हो सकते हैं हमें संसार में, कोई स्कोप भी नहीं है, स्वप्न में भी कोई स्कोप नहीं है। सुन लीजिए, हम सब इसी अभिलाषा में जीवित हैं कि सुख मिलेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, हाँ आज नहीं तो कल परसों को छोड़ो, अभिलाषा आपकी कभी पूरी नहीं होगी अगर ऐसे ही चलते रहे। ऐसे चलने का क्या मतलब है कि जब तक अपने आप को जाने नहीं कि हम कौन हैं, हमें क्या चाहिए, तो कैसे प्राप्त कर सकते हैं। निरंतर भाग रहे हैं, हम सोचते नहीं धन प्राप्त है तो अवश्य मिलेगा सुख। थोड़ा सा शांति रखिए, जिनके पास धन है कृपया एक बार उनसे बात कर लीजिए कि करोड़पति साहब, अरबपति साहब खुश हो, अरे भाई साहब क्या बात करते हो, अच्छा तो ये धन कितने कमाया था, धन तो कमाया था चैन की नींद सोएंगे, तो क्या चैन की नींद सो पा रहे हो, स्लीपिंग पिल खाते तो नींद, स्लीपिंग पिल खाते तो थोड़ी देर में नींद आती है और कई बार तो नींद भी नहीं आती है, ये हाल है। तो बाहर की स्थिति हमारे को सबकी अलग लगती है, चींटी की, बिल गेट्स की, अमिताभ बच्चन की, इंद्र की, सबकी अलग, भीतर की स्थिति सबकी वही है कि हमें आनंद चाहिए, आनंद चाहिए, और जब तक कोई भी जीव मिट्टी में आनंद ढूंढता रहेगा तो उसे आनंद नहीं मिलने वाला। ये समझने के लिए कि हमको शैंपा भूख का अवतार होने की जरूरत नहीं है, वही सरल बात है कि मिट्टी में हमारे को सुख नहीं मिलने वाला, कि होना चाहिए इतने मोबल प्राइस में सब समझ आएगा। सरल सी बात है कि मिट्टी में सुख नहीं मिलने वाला। तो तीन ही तत्व है, क्या तत्व है, जीव, भगवान व संसार। तो मुझे आनंद चाहिए, मैं कौन हूं, जीव। आनंद प्राप्त करने के केवल दो ही रास्ते हैं, तीसरा रास्ता किसी के पास नहीं है, या तो संसार या तो भगवान। तो संसार को मिट्टी से बना है, यहां तो सुख मिलेगा नहीं, हाँ तो भगवान में सुख मिलेगा, भगवान ही सुख स्वरूप है, सत्यम विज्ञानम ब्रह्म, आनंद है, विज्ञान है। तैतृय उपनिषद में बताया गया रसो वही सह, वो रस है। ब्रह्मवादी में बताया गया है एष ही एव आनंदायति, वो ही आनंददाता है, वो ही आनंद देने वाले हैं। एष ही एव, एव मतलब ही, होते हैं ना हम लोग देवी ऐसा गुणमयी मम माया ज्योते मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती, कि भगवान को शरणागत होके ही हम माया से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ही आनंद दे सकते हैं, एष ही एव आनंददायति, वो ही आनंद दे सकते हैं। तैतृय उपनिषद में बताया गया है रसह्य एवायम लब्धवा आनंदी भवती, उनको प्राप्त करके जीव आनंदी भवती, वो आनंदी हो जाता है, उसे सुख मिल जाता है। उनको प्राप्त करके बिना भगवत प्राप्ति के सुख प्राप्ति नहीं हो सकती। प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, भगवत प्राप्ति, सुख प्राप्ति, आनंद प्राप्ति ये एक ही वस्तु है, ये अलग अलग नहीं है। हम लोग बोलते हैं कि नहीं, मैं किसी और प्रकार से सुख पाई लूंगा, इसका मतलब ये है या मैं अपने परिवार वालों को सुखी कर दूंगा किसी न किसी प्रकार से। बाबा आप ही मिट्टी से सुख प्राप्त नहीं कर सकते, और आपके दादा चाचा, आपके मम्मी पापा, बॉयफ्रेंड कोई भी मिट्टी से सुख प्राप्त नहीं कर सकता। तो हमारे को अच्छी तरह समझना है कि सुख क्या है और उसे हमें प्राप्त करना है, और ये सुख जो है ये क्या हम अपने प्रयास से प्राप्त कर सकते हैं। अफसोस की बात है, नहीं। ना अस्ति अकृतः कृतेन, मंत्र उपनिषद, ना अस्ति वो ना अकृतः, अपने प्रयासों द्वारा प्राप्त नहीं किया जाता, वो तो भगवान का प्रसाद स्वरूप है। 18वें अध्याय में बताते हैं भगवान गीता में, तम एव शरणं गच्छ सर्वभावेन बालकः त्वत् प्रसादं परां शान्तिं स्थानं प्राप्सि शाश्वतः। इसका मतलब है तमेव शरणं गच्छ, अब हमें पता चल चुका है कि संसार का सुख नहीं है, भगवान का सुख है, तो क्या करो, तम एव शरणं गच्छ, भगवान श्री कृष्ण की ही शरण में जाओ। कैसे, सर्वभावेन भारतः, कोई चीजें छोड़ो मत, थोड़े से शरण में चला जाता हूँ। थोड़े से शरण में जाओगे और थोड़ा मिट्टी में सुख प्राप्त करोगे, हाँ तो मिट्टी में कभी सुख नहीं मिलेगा। मिट्टी में सुख प्राप्त करने की कोशिश करोगे तो एक ही चीज मिलेगी, माला मिलेगी, किसकी, जन्म और मृत्यु की। तो जन्म मृत्यु की माला पहने रखना है तो मिट्टी में सुख प्राप्त करने की होड़ में लगे रहिए। अगर सुख वास्तव में चाहते हैं, मृत्यु जन्म जन्म मृत्यु से छुटकारा चाहते हैं, तो क्या करना है, तम एव शरणं गच्छ, और किस तरह शरणं गच्छ, सर्वभावेन भारतः, हर प्रकार के भाव से पूरे प्रयास द्वारा भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाओ। तो उससे क्या होगा, त्वत् प्रसादात् परां शान्तिं, भगवान का प्रसाद, भगवान की कृपा से क्या मिलेगा, परां शान्तिं, उनकी कृपा से ही मिलेगी। स्थानं प्राप्ति शाश्वतः, उसके बाद स्थानं, एक तो सबसे पहले जीवित रहते हुए ही आनंदी हो जाएंगे, खुशी से मालामाल हो जाएंगे, और स्थानं प्राप्ति, भगवान के धाम उसके बाद हमें प्राप्त हो जाएगा, शाश्वतः, हमेशा हमेशा के लिए। तो एक छोटी सी उम्र है, छोटा सा ही हमारा जीवन है, 20-30 साल तक के निकल चुके हैं, किसी के 40 साल, बहुत ज्यादा अनादि काल के लिए हम यहाँ पे नहीं आए हैं, कुछ दिनों के लिए आए हैं, थोड़ा सा हम अपने आप को रैशनल बना लें, बुद्धिमान बना लें, तो हमेशा हमेशा के लिए सुखी हो सकते हैं। नहीं तो इससे पहले भी अनंत जन्म हम दुखी हो चुके हैं, बर्बाद कर चुके हैं, ये वाला जन्म और आने वाले जन्म को हम ऐसे ही बर्बाद कर देंगे, यही हम सबका हाल होने वाला है अगर नहीं सुधरेंगे। नहीं प्रभु जी, फिर भी मैं तो दुकान खोलना, दुकान में तो मिट्टी मिलेगी, फैक्ट्री है, फैक्ट्री में क्या है, वो भी मिट्टी है, सारे दिन भर मिट्टी के अंदर घूमते रहोगे तो कैसे कैसे बुद्धि प्योरीफाई होगी, कैसे हमारा मन शुद्ध होगा, कैसे भगवान को जान पाएंगे। जब भगवान को जान नहीं पाएंगे तो मिट्टी में ही पड़े रहेंगे, खप जाएंगे, मर जाएंगे, अपने अनंत पूर्वजों के साथ वो भी ऐसे ही खत्म हो चुके हैं। हम अपने आप को, हमारे को बदलना चाहिए, जीने का तरीका बदलना चाहिए, जिसने जीवन दिया है उसी से जीवन जीने का तरीका सीखना चाहिए। आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला, आर्ट ऑफ लिविंग वही बताएगा जिसने संसार बनाया है। आप अपने आप मैन्युफैक्चर कर लो अपने हिसाब से, आर्ट ऑफ लिविंग, ईगो की कोई लिमिट होती है, आपने सृष्टि करी है, नहीं, किसने सृष्टि करी है, चांडोग मिशन में सर एक शतः भगवान ने दृष्टिपात किया तो ये सृष्टि हुई है। हाँ, तो जिसने दृष्टिपात किया है उसी के सृष्टि में हम हैं, तो जिसकी सृष्टि में हमें दर्द मिल रहा है, दवा भी हमें वही देगा, वही हमें तरीका बताएगा जीने का, किस प्रकार से हम जिए और हम लोग हमेशा हमेशा खुश रहें। खुश आनंद प्राप्ति, सुख प्राप्ति, भगवत प्राप्ति, शुद्ध भक्ति, ये सब एक ही बात है। ये पर्यायवाची शब्द है, ये सिनोनिम्स है, इसमें बिल्कुल कोई भेद नहीं है। तो हम ये कई बार देखते हैं कि हम लोग भक्त भी हैं, माला वाला भी कर रहे हैं, फिर भी सुखी नहीं है। सच बात है, सुखी नहीं होते हैं। तो हम लोगों ने सब शब्द सुने हैं, भगवत प्राप्ति आनंद प्राप्ति एक ही बात है। हाँ, तो अच्छी तरह सुन लीजिए थोड़ा और। शुद्ध भक्ति और आनंद प्राप्ति एक बात है। ये खिचड़ी भक्ति से नहीं, जब मन किया मंदिर आ गए, जब मन किया नहीं आए, जब मन किया माला कर ली, जब मन किया नहीं की, जब मन किया किसी के साथ बॉयफ्रेंड के साथ घूम रहे, जब मन किया नहीं घूम रहे, अपने इच्छा अनुसार जो ये सब मैंने हमने खिचड़ी बनाई, इससे आनंद प्राप्ति भूतकाल में भी किसी को नहीं हुई और भविष्यकाल में भी कभी नहीं होगी। एक आप ग्रेन है व्यवस्था बोलिए, सिंगल पॉइंटेड इंटरियर से चलना चाहिए। जिस सुख प्राप्ति जिसमें है तो उसी की ओर हमें यत्न करना चाहिए। राजविद्या या राजगुरु पवित्र उदम उत्तम। तो आप बोलेंगे कि हम लोग तो अभी शुद्ध भक्ति नहीं कर रहे, तो क्या हमें आनंद प्राप्त नहीं होगा? नहीं, आपको भी आनंद प्राप्त होगा, बढ़ता रहेगा आपका आनंद। पर एक शर्त है कि आप अच्छी तरह समझो भक्ति को विज्ञान के रूप में और सीधा चलो। देखिए, हम तटस्था शक्ति है। तटस्था मतलब जैसे समुद्र होता है, बीच में एक तरफ जमीन है और दूसरी तरफ पानी है। तो हमको जाना है अमृत सागर में, पानी के अंदर आनंद में जाना है, दूसरी ओर है मिट्टी। तो मिट्टी में आनंद प्राप्त नहीं होगा। तो अगर हम यात्रा करेंगे तो सुखी होंगे ना, गीले होंगे तो ही। तो हम यात्रा क्या कर रहे हैं, दो कदम आगे जाते हैं, तीन कदम पीछे आते हैं, फिर एक कदम आगे जाते हैं, दो कदम थोड़ी देर खड़े हो जाते हैं, तो थोड़ा आगे थोड़ा पीछे चलते हैं। जब अंदर जाओगे तो भीग जाओगे आनंद से, लगातार भर जाओगे आनंद से, आगे पीछे ऊपर नीचे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम हर तरफ आनंद ही आनंद होगा। अगर चलोगे उस मार्ग पे, चलते नहीं हो यही तो समस्या है। चलते नहीं हो तो मतलब है कि खिचड़ी भक्ति का मतलब है कृष्ण भी माया भी। हाँ, जब कृष्ण माया दोनों मिले तो सोचोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। एक और पता चल चुका है तो इसमें चले क्यों ना। आपको जब कुछ नहीं पता था तो जब आप खेती करते थे तो ट्रैक्टर से करते थे, अब आपको मर्जनी दे दी गई है, अब मर्जनी से भी खेती करो तो आपको मूर्ख नहीं कहेगा कोई व्यक्ति का। खेती ट्रैक्टर से करो, कुत्ते बिल्ली कर रहे हैं, खाना पीना सोना बच्चे पैदा करना, उनका तो समझ आता है। और हम भी इसी में अपना जीवन खपा देंगे, खत्म कर देंगे। मर्जनी प्राप्त हुई है, स्पीड कितनी तेज है, एकदम मर्जनी प्राप्त हुई है, हम 10 की स्पीड में चला रहे हैं और वही खेत में। तो हमारे बुद्धि का तो क्या तारीफ की जाए। और हमारी बुद्धि या इंद्र की बुद्धि सबकी एक बराबर है। इंद्र ने एक बार भगवान ने इंद्र को दर्शन दिए, बोले क्या चाहिए इंद्र, बोलो। इंद्र ने ये नहीं बोला कि भगवान मुझे आप चाहिए, वो मतलब अब तरह चाहिए। तो वो भी उतने ही बुद्धू हैं जितने हम लोग बुद्धू हैं। क्यों? वो भी ये सोचते हैं कि मिट्टी में सुख प्राप्त हो जाएगा। मिट्टी में ना किसी स्त्री को, ना किसी पुरुष को, किसी को भी सुख प्राप्त नहीं होने वाला। और हमेशा से यही होता है कि हम क्या होता है कि हम जो पुरुष होते हैं एक नग्न स्त्री को देखते हैं उसकी ओर आकर्षित होना शुरू हो जाते हैं, या स्त्री किसी नवजोवन पुरुष को देखती है उनकी ओर आकर्षित होती है, और हमें भरी सी थाली देख ले खाने की भरी तो हम उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं, या कोई बड़ा सा ईंटों का ढेर देख ले मतलब कि बंगला तो हम उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं, टीन का डब्बा देखते हैं उनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। क्यों? हमको लगता है हमें सुख दे देगा। ये बात को हम समझ जाए कि मैं आत्मा हूं तो ये इस तरफ जाना ही बंद हो जाएगा और फिर दूसरी ओर हमारा चलना शुरू होगा। जब तक ये बात मानेंगे नहीं कि इस मिट्टी के अंदर सुख नहीं है तो कैसे उस ओर आप प्रोग्रेस करेंगे? क्या होगा? फिर कुछ होगा, फिर वापिस आ जाओगे मिट्टी में। इस बात को मन में बिठाना होगा, बारम्बार शास्त्रों द्वारा सुन के, पढ़ के, संतों द्वारा सुन के और बार बार एनालिटिकली देख के, क्या वाकई में मिट्टी से सुख प्राप्त हो सकता है? मेरी मम्मी कर रही है प्रयत्न, कोई बात नहीं, पापा कर रहे हैं, कोई बात नहीं, पर क्या वास्तव में मिट्टी से मुझे सुख प्राप्त हो सकता है? ये संसार मिट्टी है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इसमें से किसी भी तत्व से हमारे को सुख नहीं मिल सकता और सब कुछ संसार में इसी का कॉम्बिनेशन है। हम बोलते हमारे बच्चे बोलते माँ बाप को संतुष्ट कर देंगे तो सुख प्राप्त हो जाएगा, माँ बाप बोलते बच्चों को संतुष्ट कर देंगे तो सुख प्राप्त हो जाएगा, ये कैसे संभव बताओ? कौन किसका माँ कौन किसका बाप? अगर हमारे पिछले जन्मों के बच्चों को इकट्ठा कर दिया जाए लाइन लगा के तो बोले पहचानो कौन से हैं? सारे आपके हैं। बोले मैं हूँ कौन? पिंकी। जब आप 10 जन्म पहले सुअर थे ना, उसके बाद जब आप औरत बने थे ना, तब मैं आपकी लड़की थी। अच्छा, आप अभी जो आदमी हो गए पहले उस जन्म में औरत थे। अच्छा, तुम कौन हो? वो छोटी चींटी है। ची ची ची, तुम कौन हो? मैं अभी आपकी लड़की हूँ। जब 20 जन्म पहले चींटी बने थे ना तो आपने मुझे जन्म दिया था। अच्छा, पेड़ खड़ा हुआ है वो बहुत से चल रहा पसेर भी लिखा हुआ है कि मैं भी आदि का पुत्र संतान। तो हर एक प्रकार हम देख रहे हैं, इतनी सारी कुत्ते पिल्ले गधे हर प्रकार के जो हमारे बच्चे रह चुके हैं और हम उनके बच्चे रह चुके हैं। तो कौन किसका माँ और कौन किसका बाप? इसलिए मैं कहीं बोलते संसार के सारे इस तरह मजाक है, बिल्कुल मजाक मात्र है। मेरे बच्चे हैं। अच्छा, आप इसके बच्चे? मैं भगवान के बच्चों पर ये मेरे बच्चे हैं। ओके ओके, कहते हो मेरे बुजुर्ग है, हमारे बुद्धि है, आती की सलाह से सारा देश चले तो देश की उसी तरह खत्म हो जाएगा। ये मैं मजाक करने के लिए कर रहा था, पर हमें वास्तव में जीवन जीने की कला सीखनी चाहिए, जानना चाहिए कि जीवन क्या है। हम कुछ देर के लिए यहाँ पे आए हैं और फिर हम चले जाएंगे। जैसे अगर कमरे में थोड़ी देर के लिए आए हो ना फिर चले जाओगे, वैसे ही जो शरीर है इसको ग्रह बोला जाता है, घर। अब यहाँ घर में आए हो या काम करोगे चले जाओगे, उसी प्रकार से शरीर भी घर है, इसको ग्रह प्रवेश कहा जाता है। शरीर के अंदर हमारा प्रवेश होता है, तो हमारा ग्रह प्रवेश हुआ हुआ है। ग्रह में व्यक्ति थोड़ा दिन रहे, जब घर ही नहीं रहेगा तो आपको कहीं ना कहीं तो जाना होगा। थोड़ी देर के लिए हमें घूमता रहोगे फिर पता नहीं क्या बन जाओगे, पिंकी डिसूजा या पता नहीं 8 पांव वाले या क्या, ये नहीं बनो। तो जब आए हैं पिंकी वाली उस नेचर परफेक्शन, कोई जरूरी नहीं है कि हमें 10-20 साल जीना है या हम एंकर बन जाएंगे टीवी पे या कुछ भी। बन भी गए तो क्या हो जाएगा? जो बने हुए बस सुखी है क्या? कितने लोग तो सुसाइड करते हैं फेमस लोग, तो फेमस से सुख मिलता तो सभी सुखी होते, धन से सुख मिलता तो धनी भी सुखी होता कम से कम। अमेरिका में 60% से ज्यादा लोग स्लीपिंग पिल्स खाते हैं, नींद नहीं आती है, नींद फिर भी नहीं आती है। नींद तो भगवान शुद्ध चैन की नींद तो भगवान की कृपा से आती है। अमेरिका में प्रोफेशन है सबसे बड़ा स्लीपिंग डॉक्टर्स का, क्योंकि इतने बेवकूफ हो चुके हैं अमेरिका में लोग कि वो मिट्टी में पूरी तरह विश्वास है कि सुख मिलेगा, तो इसलिए वो इतना एंडेवर करते हैं, प्राप्त नहीं होता, फिर क्या होता है? दुखी होते हैं, नींद नहीं आती। तो प्रोफेशन है कि लोग सोना सिखाते हैं आजकल यूएस के अंदर कि सोया कैसे जाता है, नींद का जिनको सोना नहीं आता वो जागेगा कैसे सही तरीके से। संसार तो बहुत विचित्र है। कई बार आप देखते होंगे कि आपका कल सुबह पेपर है, आज इतवार है, कल सोमवार है, सोमवार को आपका पेपर है सीए का बीए का, तो आप अलार्म लगाते हैं और फिर भी आपको पता है कि अपनी बुद्धि को विश्वास है कि मैं शायद नहीं जा पाऊंगी, मतलब मम्मी आप प्लीज मुझे उठा लेना, क्यों? वो है तो अलार्म मैं बंद कर दूंगी और मैं सो जाऊंगी। तो ये भौतिक जागृति से ही हम अपने आप नहीं जाग सकते हैं, तो आध्यात्मिक जागरण कैसे हमारा अपने आप होगा? हमें कितने कितनी आवश्यकता है हर पल पल गाइडेंस की, तभी हमारा जागरण होगा। तो हम सोते रहेंगे ऐसे, रोते सोते आए थे और रोते सोते ही मर जाएंगे। एक और बात फिर से, येट अनदर हॉरर स्टोरी एंड एंड वी आर ऑन द वर्ज ऑफ अनदर बिगनिंग ऑफ अनदर हॉरर स्टोरी। कितनी बार ऐसा हो चुका है? तो हमारे अपने आप को बदलना चाहिए। जिस प्रकार से मुझे सुख मिलेगा संसार में, सभी प्रकार से उसी सबको वैसे ही सुख मिलेगा, ये बात समझ आनी चाहिए। गीता के 6वें अध्याय में बताया गया, वट इज गुड फॉर मी इज गुड फॉर ऑल लिविंग एंटिटी। यही बात भक्त समझता है अच्छी तरह, इसलिए वो प्रचार करता है सर्वभूत हिते रतः, सर्व प्राणियों के हित के लिए। आपको हीरो बन के सुख मिलेगा, तो जो हीरो है उसको तो हीरो बन के सुख नहीं मिलेगा। इसका मतलब है हीरो बनने में सुख नहीं मिलेगा। धन उसी प्रकार से देखिए, आपको लगता है धन से सुख मिलेगा,
जिसके पास है उसे नहीं मिलता। तो जो जिससे वास्तव मुझे सुख मिल सकता है उसी से ही सबको सुख मिल सकता है। आप अपना नया तरीका इन्वेंट नहीं कर सकते, प्लीज समझिए। थोड़े अहंकार को नीचे कीजिए। मैं कर दूंगा, कैसे कर दोगे आप? सारे लॉज के बहाने को बदलना पड़ेगा, नहीं तो किसी को मिट्टी से सुख मिलेगा? तो सबको चेंज होना पड़ेगा। और हम हर क्षण कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, और गीता ने बताया कि ना ही कष्ट क्षण अभी जातु तिष्ठते अकर्म कृत। एक भी क्षण जीव बिना कर्म किए नहीं रह सकता। या तो भगवान की ओर जा रहा है, सुख की ओर जा रहा है, या भगवान से पीछे जा रहा है, या दुख की ओर जा रहा है, या संसार की ओर जाना है, या दुख की ओर जाना, एक ही बात है। और पहली बात तो हमें नहीं पता कि हमें क्या करना है, और केवल यही समस्या होती तो कोई बात नहीं थी। हम परिवार के साथ रहते हैं तो हम कोई ना कोई बात भरे, कोई बात ही खाले खा लें, इतना ही कोई स्ट्रिक्ट होने की जरूरत है। बाहर का खा लें, खाए प्यार को क्या हुआ, कभी कभी होता है। अच्छा, और कोई बात नहीं, मारा करने की इतना फैनेटिक नहीं होना चाहिए, मतलब कुछ करो। अच्छा, आगे मुझे बात बताइए, इसमें हमारे को संसार का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति नहीं होना पड़ेगा। सरल से प्रश्न पूछेंगे, अगर आप किसी का खून करते हो तो आपको सजा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? हाँ, खून करना मतलब है एक ही बड़ी व्यक्ति का मरना। जितने मनुष्य जीवन प्राप्त हो गया है, आप उसे उल्टी सीधी राय दोगे, उससे हजारों लाखों बार मरेगा तो कितनी सजा मिलेगी आपको? असीमित सजा मिलेगी, असीमित। तो एक तो सबसे पहले तत्व ज्ञान इस संसार में हमें होना जरूरी है कि हमें कैसे जीना है। दूसरा, हमारे ऊपर कितने लोग निर्भर हैं। माँ बाप जो है उन्हें ये हक नहीं है कि अपने बच्चों को कोई भी सलाह दे देते, तो उन्हें ही तत्व ज्ञान ना हो। अपने बच्चों को बार बार मरवाओगे आप क्या? आपको कुछ सजा नहीं मिलेगी। अरे भौतिक संसार में कोई नहीं छोड़ता, कोर्ट नहीं छोड़ता, एक बार भी मार दो तो आध्यात्मिक जो नियम है उनकी कितने भयंकर होगा आपकी सजा। सोचने की कोशिश कीजिए, आपने गलत राय दी, अच्छा खाता और भक्ति में छोड़ा हुआ था या छोड़ी हुई थी, आपकी गलत राय की वजह से अगर आप बार बार मरेगा। श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंध के पंचम अध्याय के 18वें श्लोक में बताया गया है, गुरु न सत्य स्वजन न सत्य। गुरु बनने का अधिकार नहीं है किसी को, किसको? जो उन पर निर्भर है व्यक्ति। मन के अनुसार सारी योनियों में कार्य किया जाता है, कुत्ते बिल्ली गले की योनि में। हम बोले मैं भी मन के अनुसार कार्य करता हूं, तो हम क्या बोलना चाहते हैं वास्तव में कि मैं पशु हूं? बोले मन के अनुसार कार्य करता हूं, कितने ठाठ से बोलते हैं, मेरे मन में जो आएगा वही करूंगा। कुत्ता भी ऐसे बोलते हैं, गले भी ऐसे बोलते हैं, मेरे मन में जो आएगा मैं करूंगा। मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ मन को कंट्रोल करने के लिए। जो व्यक्ति मन को कंट्रोल कर लेते हैं वो हमेशा सुखी रहता है, जो मन को कंट्रोल नहीं कर पाता वो हमेशा दुखी रहता है। तो गुरु बनने का अधिकार नहीं है। नंबर दो शब्द है स्वजन। स्वजन समझते हैं आप लोग क्या होता है? स्वजन रिलेटिव, स्वजन होते हैं ना रिलेटिव। रिलेटिव में कौन कौन होता है? मासी, चाचा, बच्चा, भाई, बहन। रिलेटिव बनने का भी अधिकार नहीं है। अगर आप पे जो डिपेंडेंट हैं उनको आप मृत्यु के सागर से नहीं छुड़ा सकते। सोचिए, जब गुरु बनने का अधिकार नहीं है, रिलेटिव बनने का नहीं है, तो पिता ना सत्या, पिता बनने का अधिकार नहीं है। एक कुत्ते की तरह बच्चे नहीं पैदा करने चाहिए मनुष्यों को कि तेरा मोड ऑफ पैशन में आए और रिजल्ट हो गया 9-10 महीने बाद कोई बाहर आ गया। और जननी मतलब मां। हाँ, तो ना मां बनने का अधिकार है किसी को, ना पिता बनने का अधिकार है, ना रिश्तेदार बनने का अधिकार है, ना गुरु बनने का अधिकार है। जब तक कि उनपे जो निर्भर है व्यक्ति उनको जन्म और मृत्यु के चक्र से ना छुड़ा पाए। दिस इज अ वेरी सीरियस इशू। हम सब लोग कितने किसी के रिश्तेदार हैं, किसी ना किसी के माँ बाप हैं, कोई हमारा माँ बाप है। आज तक तो हमें किसने सिखाई नहीं है ये सब बातें, पर अब हम भगवान की कृपा की वजह से अब हम ये चीज सुन पा रहे हैं। तो कृपया अपने आप को हम बदलें, کب تک پشو کی طرح جیتے رہیں گے؟ آخر کب تک؟ کب تک؟ کبھی نہیں سدھریں گے ہم. ٹی شرٹ ہی بنوا لیجیے، چھپا لیجیے، بدل دیجیے، کبھی نہیں سدھریں گے. وہی پہن کے 365 دن گھومیے، شاید اس سے کبھی سدھر جائیں. شیشے میں دیکھیں گے لکھا ہوگا کبھی نہیں سدھریں گے، شاید سدھر جائیں. کیا سننا باقی رہ گیا بتائیے؟ ایسی کون سی چیز ہے جو ایسا کیا سننا چاہتے ہیں جس سے ہم ٹھیک ہوں گے؟ بالکل پشو کی طرح. بھارت بھومی میں جنم لینے کے لیے تو دیوتا بھی ترستے ہیں. دیوتا منشیہ کے روپ میں جنم لینے کے لیے نہیں، گھاس کے روپ میں. تو ہمیں تو منشیہ کا جنم پراپت ہو چکا ہے. بھارت بھومی سے ہریلا منشیہ جنم یار جنم ساتھ ہے تری کر پروتا. جس کا بھارت بھومی میں جنم ہوا ہے انہیں کیا کرنا چاہیے؟ جیون سارتھک کرنا چاہیے، مطلب بھگوان کی اور لگنا چاہیے، کیونکہ اسی سے سکھ ملے گا. اور کر پروپکار. اور یہی چیز جب اس کو پتا چل جائے گا کنفیوژن سے، تو نیچرلی سب کو بتائے گا. جب آپ کو مالا مال ہو چکے ہو اور انت آپ کے پاس دھن ہے تو بانٹو گے ہی صحیح. پر ہمارا کیا حساب ہے کہ بھارت بھومی سے ہویلا منشیہ جنم یا جنم ستیاناش کری کر ستیاناش. ہم اپنا جنم ستیاناش کر رہے ہیں اور سارے لوگوں کا ستیاناش کر رہے ہیں، ہمارے رشتے دار، دوست، بھائی، بہن. کیونکہ ہمیں تو پتا نہیں ہے کیا، اور آپ کو خود کو نہیں پتا کیا کرنا ہے صحیح، تو جو بھی بات اٹھتی تھی نہیں بولو گی. کتنا بھوشن پریمان ملے گا سوچیے ذرا، کتنا بھینکر پریمان ملنے والا ہے. ایک مرتبہ پر اتنا پریمان ملتا ہے کسی کا قتل کر دو، ہم کتنے لوگوں کے قتل کرنے کے ذمہ دار ہوں گے، وہ بھی انیکوں بار. کتنی بار لوگ مریں گے اگر وہ صحیح اس کا نہیں سمجھیں گے جان کو، اور ہم اس کے کئیوں کے ذمہ دار ہوں گے. کیونکہ ہم نے پیدا کیا کسی کو، کوئی ہمارے پہ ڈیپینڈنٹ ہمیں ہوتی تھی کہ ہم نے صلاحیں دی، کوئی بات نہیں سب ٹھیک ہے، اتنا بھی مت ہو. ہاں جمراج بھی سوچیں گے اس سے بھی زیادہ تمہارے کو ملے گا، کمپاؤنڈ انٹرسٹ کے ساتھ سزا ملے گی. نرک کے الگ الگ پرکار کے ہوتے ہیں، تین پرکار کے نرک ہوتے ہیں، لوور، ہائر، انٹرمیڈیٹ. تین پرکار کے سورگ بھی الگ الگ پرکار کے ہوتے ہیں، نرک بھی الگ الگ پرکار کے ہوتے ہیں. ہمارا سب کا پتا کیا حال ہے، کیا چاہیے؟ سکھ چاہیے. کیا چاہیے؟ شانتی چاہیے. کیا چاہیے؟ سمپتی چاہیے. بھگوان چاہیے، بھگوان نہیں چاہیے. سپشٹ ہے، جسے کہتے ہیں نا ننگے لوگ. بالکل دیوتا بھی ایسے ہی ہیں، وہ بھی بھگوان سامنے چلے جاتے ہیں، نہیں چاہیے آپ مجھے. کتنے دکھ کی بات ہے. مان لو ایک لڑکی ہو، وہ اپنی بھابھی کے پاس آئے، بھابھی یگ لڑکی 19 سال کی، بھابھی بھابھی میں نے ایسے کچھ چاہتی ہوں گی نا، مجھے کوئی بہت ہی اچھی چیز کاسٹ کاسٹ ہو جائے کہ میں وہ میرے ساتھ رہ جائے، میں اس سے باتیں کروں. اچھا اور کیا چاہتی ہو تم؟ بھابھی بھابھی میں چاہتی ہوں کہ میرے کو نا سسر جی بھی کاسٹ ہو جائیں، تو وہ میرے کو آشیرواد دیں، میرا خیال دیں. اچھا بیٹا اور کیا چاہتے ہو؟ بھابھی بھابھی میں چاہتی ہوں کہ ایک میرے کو ٹیبل ہو، نٹکھٹ سا ٹیبل ہو، وہ میرے ساتھ کھیلے. اچھا بھابھی بھابھی آپ کیا چاہیے؟ میں چاہتی ہوں کہ مجھے کوئی چیٹ ہو، ہاں تو اگر میں تھوڑا غلط کر لوں تو میرے کو ڈانٹے. اچھا اور کیا چاہتی ہوں؟ بھابھی بھابھی میں چاہتی ہوں کہ میری ننند بولتے ہیں اس کو وٹ ایور وہ مل جائے، ہم عمر اس کے بعد میں بات کر سکوں. اچھا تو بھابھی کہتی ہے میرے سر آپ بیٹا گویا آپ نا واستو میں پتی چاہیے، پتی نہیں چاہیے مجھے، پتی نہیں چاہیے، باقی سب کچھ چاہیے. ارے باقی تو سب کچھ پیکج دن میں ہی آ جائیں گے اگر آپ پتی اگر شادی کر لو. ہمارا بھی وہی حساب ہے، بھگوان نہیں چاہتے، سکھ چاہتے ہیں، شانتی چاہتے ہیں، سب کچھ، پر بھگوان نہیں چاہیے ہمیں. ارے بھگوان ملیں گے سب تو موسٹ میں مل جائیں گے، تو پیکج ڈیل ہے. یہی اسی سب کر کے بولنا پڑتا ہے، میرے کو اچھا ہی لگتا ہے ادھارن دے رہے تو کیا کریں، یہی سمجھ آتے ہیں ہم لوگوں کو. جے پرساد پورے سرو آشا، ان کی کرپا سے ساری آشائیں سب سکھ پورا ہو جائے. کسی کی کرپا سے؟ بھگوان کرشن کی، گرو کی کرپا سے. تو کر کیا دیا اس کے بعد؟ پھر اس کے بعد تو کچھ اور ہی وپریت ہی کارے چل رہے ہیں، تو کیسی آشائیں پوری ہوگی، کیسا سکھ ملے گا جیون میں کبھی؟ کیوں یہ شبد بول رہے ہیں لڑکی کی طرف؟ پلیز مین اٹ، دس پریئر شوڈ ناٹ بی جسٹ لپ سنک، شوڈ بی ہارٹ سنک. زندگی سے یہ پھر کر کے بولنا ہے. اگر مٹی کے سنسار میں سکھ ہوتا تو آپ تھوڑا بدھی کا پریوگ کر کے مجھے بتائیے، کیونکہ میری بدھی تھوڑی کم ہے.
कि जैसे जो राजा थे कुछ समय पहले वो सब कुछ बनाया जाता, जो भारत महाराज जिनके नाम पे भारत वर्ष पड़ा है, उन्होंने 24 वर्ष वो पूरे संसार के राजा थे, पूरे भूमंडल के, उन्होंने 24 वर्ष की उम्र में सब कुछ त्याग किया, घर बाहर सब कुछ, और जंगल में चले गए। अगर इसी से सुख मिलता तो वो वहां क्या किस लिए गए थे? कोई मॉडलिंग के शूट के लिए तो गए नहीं थे वो वहां पे, जंगल में एड शूट हो रहे हैं, पूरा जंगल में चले गए, पूरा अपना सब कुछ अर्पण कर दिया भगवान को। हम युधिष्ठिर महाराज को देखते हैं, किसके भगवान ने युद्ध करवाया था कि धर्म की स्थापना हो, धर्म की स्थापना हुई, युधिष्ठिर महाराज राजा बने, उसके बाद क्या किया? सब भाई चले गए वनवास में, क्यों गए? भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने के लिए निरंतर। तो ये सब लोगों ने कार्य किया है, तो ये कोई ऐड के लिए नहीं किया है, ये इसी से ही सुख प्राप्त होता है। ये समझाना चाहते हैं अपने आचरण के द्वारा कि आपको जितना भी धन हो जाए, हजारों लाखों सुंदर पत्नियां या पति किसी के भी साथ कुछ भी मिल जाए, तो सुखी नहीं हो सकते हम। सुख कुछ अलग ही है, वो जो फॉरन का शब्द है वो यहां का नहीं है, सुख यहां पे है ही नहीं, किसी को भी नहीं मिलेगा, तो आपको कैसे मिल जाएगा? इस दिन को हमें जानना पड़ेगा कि नहीं, संसार में सुख है, संसार में सुख नहीं है। ये बात हमारे समझ आए तब तो हमारी यात्रा शुरू होगी, अभी तो हमारी यात्रा ही शुरू नहीं हो रही है, ये समझ ही नहीं आ रहा हमें संसार में सुख नहीं है, तभी दुखी है। माला कर रहे हो, हाँ दुखी हो, क्यों? क्योंकि पागल है, ये बोलना भक्ति भी करनी है। अच्छा, भगवान कह रहे भक्ति ही करना, हम कहते हैं भक्ति भी करेंगे, तो जब तक अपनी दिल पर अड़े रहोगे हाँ भक्ति भी करनी है, तब तक सुखी रहोगे। मिश्रित भक्ति करते देवता भी सुखी नहीं होते, तो आप और हम कैसे सुखी हो जाएंगे? देवता सुखी नहीं होते मिश्रित भक्ति करके। हम कहते हैं थोड़ा सा आप दीप दिखा देंगे, कभी कभी माला कर लेंगे, कभी मंदिर आएंगे, मन करा कभी क्लास में आए नहीं आए, ऐसे तो भाई सुख प्राप्त होगा। ये तो विज्ञान है, ऐसा मैं प्रारंभ में आपको बताया, ये साइंस है, साइंस के अंदर स्टेप बाय स्टेप सब कुछ क्रम बताया गया है, ऐसे चलेंगे तो ही सुख प्राप्त होगा। अगर शाही पनीर बनाना है, किसी भी गृहिणी को बोलो कि भाई कैसे बना दो, जाएंगे पहले टमाटर डाला, फिर नमक डाला, थोड़े पनीर डाला, ऐसे ऐसे करके बना दिया, हमारे जैसे कोई व्यक्ति पहुंच जाए, नहीं मैं पहले ये डालूंगा, नहीं ऐसे मत करो, ऐसे नहीं बनता, ये साइंस है, और नहीं मेरे मन तो ऐसे करता है, हाँ तो अंत में क्या रहेगा, कुछ और ही बनेगा, वो शाही पनीर नहीं बनने वाला। ठीक उसी प्रकार से भगवान ने शास्त्र दिए हैं हम सबको सुखी करने के लिए, शास्त्रों का एक और नाम है कि हाउ टू बी हैप्पी, ये उसका एक्सप्लेनेशन है शास्त्र। भगवान हमारे पिता है, अब ये सोचिए इस गंदे से सेल्फिश संसार के अंदर जब पिता अपने बच्चों को तड़पता हुआ देखता है तो उनके लिए कुछ करना चाहता है ना, उसी प्रकार से भगवान आपको तड़पता हुआ देख रहे हैं, उसी लिए उन्होंने शास्त्र छोड़ दिए हैं कि इसके अनुसार जियो, तो इस जीवन में भी सुखी रहोगे और मृत्यु के बाद भी सुखी रहोगे। हमारा ज्ञान अपने मन के अनुसार जीने हैं, तो ये जीवन हमारा दुख से भरा हुआ है और आने वाले जीवन में सुख की कोई आशा होनी नहीं चाहिए। तो हमको ये अपना जीवन को बदलने की कोशिश करनी है हमें। भगवान ने बताया कि सुख कैसे मिलता है, तो हम अपना ही तरीका इन्वेंट करेंगे तो कैसे सुखी होंगे बताइए? ये साइंस है, विज्ञान है, इसको ब्रह्मा के लिए डाल सकते तो कोई भी शुद्ध जीव कैसे डाल सकता है, कैसे बताइए? हम अपने आप को शरीर समझते हैं तो क्या करते हैं, शरीर समझते तो बोलते हैं कि खा लूंगा, इंद्रियों की पुष्टि के अंदर हम अपनी पुष्टि समझते हैं कि जीभ को कुछ डाल दूंगा तो उससे खुश हो जाऊंगा, कान में कुछ डाल दूंगा तो शायद उससे कोई सॉफ्ट त्वचा और छू गई, उसको इचिंग खारिश हुआ तो उससे मैं खुश हो जाऊंगा। तो लिविंग एंटिटी जब अपने आप को सेंसेस से आइडेंटिफाई करती है, मतलब हम जब अपने आप को इंद्रियों से आइडेंटिफाई करते हैं तो हम क्या सोचते हैं? बस इंद्रियों की पुष्टि मतलब मेरी पुष्टि, आप अलग हो, आपकी इंद्रियां अलग हैं, या आपकी सेंसेस आर योर सेंसेस, दिस इज नॉट यू, यू आर बियॉन्ड दिस सेंसेस। जब वहां के गर्भ में तो आपकी टांग हाथ और जननेंद्रियां हैं तो ठीक ही नहीं, शुरू में भावना गति से कर्म बताया गया, महीनों बाद तो आपके हाथ टांग आते हैं, शुरू में तो हाथ टांग होते ही नहीं है, आप होते हो तो आपके हाथ टांग नहीं होते, इंद्रियां तो आपकी बाद में रवान देते हैं। हम शरीर को शरीर के मालिक समझते हैं अपने आप को, मालिक नहीं है, भगवान ने हमको एज अ गिफ्ट दिया है ये,
یہ ہم لے کے نہیں آئے تھے، جب ماں کے گھر میں آئے ماں کا ٹکڑا رہے تھے، بس ہاتھ نہیں تھے، ٹانگ نہیں تھی، آنکھ نہیں تھے، ناخن نہیں تھے، بال نہیں تھے، منہ نہیں تھا، کان نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا، آپ تھے کس میں، ماں کے ٹکڑے میں، یہ تھوڑا بڑا ہو گیا ہے اور اس کے تھوڑی اندیاں باہر آ رہی ہیں، وکست ہونے پر کس کی تشتی ہے، میری تشتی، بولتو یہ تو بعد میں آیا ہے، ہاتھ ٹانگ منہ یہ سب بعد میں آئے ہیں، اس کی تشتی میں آپ کی تشتی کیسے ہو سکتی ہے؟ آج آدمی سردار میں آتے ہیں، اسپرچل لائف میں آتے ہیں تو بس لوگ سمجھاتے ہیں سنجن کہ دیکھو بھائی آپ الگ ہو، اندریاں الگ ہیں، تو ہمارے کو وہ لگتا ہے بہت بڑا انکنوینئنس لگتا ہے ہمارے کو، یہ کیوں بولا جا رہا ہے، ہم تو شارٹ ٹرم انٹرسٹ چاہتے ہیں اپنا کہ بس اندریاں درست ہو، میں اگر بھائی میں اس لڑکے کو چاہتی ہوں اس کے ساتھ رہوں گی، اگر میں کھانا چاہتا ہوں کھانا کھاؤں گا، اور بس میں کو ایک کا تین کا ڈبا چاہیے، کسی کو مٹی کا ڈھیر چاہیے، بس ہم ایسے ہی سوچتے ہیں، بس کوئی منع کرتا ہے تو ہمارے ایگو کو ٹھیس پہنچتی ہے، تو ہمارے کو بدھیمان ویکتی کی طرح اپنا شارٹ ٹرم اور اپنا لانگ ٹرم انٹرسٹ دیکھتے ہوئے کچھ چیزوں کو سیکار کرنا پڑتا ہے، جب آپ کا پیپر ہوتا ہے تو اگلے اس سے پہلے دن کہیں پڑھنے بیٹھتے ہی ہونا چاہتے ہوئے ٹھیک، اسی پرکار سے کڑوی دوائی ہوتی ہے، کڑوی لگتی ہے پر لیتے ہو ٹھیک ہونے کے لیے، اسی پرکار سے ہمارے کو اپنا لانگ ٹرم انٹرسٹ کا دھیان رکھتے ہوئے ہمیں لانگ ٹرم انٹرسٹ ایک طرح کا ہے، بس انسار کی سب چیزوں کو دیکھیے کہ کیا واسطو میں اس سے لوگ سکھ ہو رہے ہیں، سکھی ہو رہے ہیں، بھکتی کرنے کے لیے بہت طرح سے امپورٹینس یہ بھی ہے کہ ہم کسی بھکت کو سمرن کر لیں، وہ لوگ بھی ہمیشہ خوش رہتے ہیں جو بھکتی کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنی اور دیکھتے ہیں یا اپنے پریوار کی اور دیکھ لیں یا اپنے دوستوں کی اور دیکھتے ہیں، جس کی اور آپ چاہتے ہو اس کی اور دیکھ لو، وہ بھی شکل دیکھو گے آپ کو پتا چلے کون ہے کتنا سکھی ہوتا ہے، تو ہم لوگ بھکتی کرنا چاہتے ہیں تو کسی کی بھکت کی ہم سمرن بھی کرتے ہیں تو بھی ہم بھکتی کر سکتے ہیں، کہ یہ ویکتی کا سکھی کہتے ہیں، اس کو ایسا کیا مل رہا ہے جو کروڑوں روپے میرے پتا جی کو نہیں ملا آج تک، لوگ سوسائڈ کرتے ہیں اربوں روپے کے بعد بھی، تو ایسا کیا ہے؟ دیکھیے جیت کو یہی سمجھانے کے لیے کہ آپ آدھیاتمک جگت کے واسطے ہو، یہ سرشٹی ہوتی ہے، یہ ہمارا شریر ہے نا، اس کو بھی سرشٹی کہا جاتا ہے، اس کا ایک پرپس ہے ٹھیک، اسی پرکار سے جس بھوتک سنسار میں ہم ہیں اس کا بھی ایک پرپس ہے، ایک ادیشیہ ہے، کیا ادیشیہ ہے؟ سرو دھام جانا، بھگوان شری کرشن اپنے دھام سے یہاں پہ آتے ہیں، اوترت ہوتے ہیں ایک ادیشیہ سے، کیا ادیشیہ ہے؟ ہم پشو سماج منشیوں کو سرو دھام سے لے کے جائیں، اور بھگوان آتے ہیں تب بھی ہم نے سوچا تو بھگوان کرونا وش اپنے سنتوں کو بار بار بھیجتے ہیں، پھر وہ یہ بات سمجھاتے ہیں کہ دیکھو گھر چلو، تو سرشتی کا پرپس، بھگوان کے اوترن کا پرپس، شو بھکتوں کے آنے کا پرپس ایک ہی ہے، ایک ہی پرپس ہے، گھر چلیں، جس کو چھوڑیں گے مٹی میں سکھ ملے گا، صرف ہٹی ہے ہم لوگ، بےخوبی کی بھی مٹی میں سکھ ملے گا، یہی سی بات ہم اڑے ہوئے ہیں بس، اور پھر ہم بولتے ہیں بدھیمان ہے، اور پھر ایک گھڑا دوسرے گھر کو نوبل پرائز دیتا ہے، ایک گھڑے کو نوبل پرائز، منشیہ جیون ہم مانتے ہیں کہ بہت ہی مہتوپورن ہے، بہت ہی مہتوپورن ہے، امپورٹینٹ ہے، اور یہ بھی مانتے ہیں کہ منشیہ جیون کا ہر دن امپورٹینٹ ہے، مانتے ہیں بات کو، کتنے بدھیمان ہیں ہم لوگ، پھر ہم کہتے ہیں بدھیمان ہیں، منشیہ جیون امپورٹینٹ ہے، ہاں مہتوپورن، ہاں درلبھ ہے، ہاں اس کے بیچ کے دن ہیں وہ ایسے ہی ہیں، اس میں کچھ بھی کرو، اس میں انڈیا پاکستان کا میچ دیکھو، اس میں اینکر بن جاؤ، اس میں سی اے بننے کی کوشش کرو، اس میں پیسہ کمانے کی کوشش کرو، اس میں یہ کرو، اتنے مشکل سے ملا ہے دن، روز صبح اٹھ کے ہمیں اپنے آپ کو پہلا آنکھ پہلی بار آنکھ کھولتے ہیں، اس سے بھی پہلے ہمیں اپنے آپ کو یاد دلانا چاہیے، سب سے پہلے بہت بہت دھنیہ واد کرنا چاہیے، تھینک یو کرشنا فار گیونگ می یٹ اندر ڈے فار مائی پیوریفیکیشن، اے بھگوان آپ کا بہت بہت دھنیہ واد ہے، آپ نے پھر سے کرونا وش ایک اور دن دے دیا، اب میں اپنے آپ کو شدھ ضرور کروں گا، دھنیہ واد دینا چاہیے روز صبح آنکھ کھولنے سے پہلے، اور اس کے بعد ہمیں یاد دلانا چاہیے کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں، کیا میں اپنی مرضی سے یہاں میں آیا ہوں کہ مجھے یہاں پہ بھیجا گیا ہے، میں اپنی مرضی سے یہاں نہیں آیا، ہم نے کسی نے اپنا یہ پنجرا نہیں چنا تھا، اگر سے پنجرا چنا ہوتا تو بولتا کہ میں اتنے موٹے شریر میں نہیں ہونا چاہتا، کوئی بولتا میں نے چھوٹے شریر میں نہیں ہونا چاہتا، تو کسی نے اپنا یہ پنجرا چنا نہیں ہے، ہم کو بھیج دیا گیا ہے، آؤ اگین پھر سے جاؤ، تو پھر ہم جانے اس سرشتی کا پرپس ہے، ہمارا جانے کا پرپس ہے، اور جب تک ہم یہ نہیں مانیں گے کہ میں آتما ہوں تب تک ہم سنسار میں سکھ ڈھونڈیں گے، نشچت ہے تو اس کو ڈھونڈنا ہی ہے، हाँ तो सुख ढूंढेंगे इसका मतलब है हमको लगता है संसार में सुख मिलेगा। अगर ये कंसेप्शन हमारा रहेगा तो चाहे हमारी शादी हो चाहे ना हो तो हम प्राय स्त्री पुरुष का संग करने में लिप्त रहेंगे कि नहीं रहेंगे, क्या आपको पता है कि इससे सुख मिलेगा, आप यही माने बैठे हो तो क्यों नहीं ढूंढोगे और ज्यादा, मतलब मेरी पत्नी मोटी है मतलब मेरी पत्नी छोटी है तो मेरे को और जगह मुंह मारेगा, क्यों कोई इम्पेटर भी नहीं है, कोई हायर क्वालिटी नहीं है, सही जीवन जीने में क्वालिटी नहीं है। शादी से पहले भी स्त्री भी यही करेगी और सोचते कि मिट्टी के मुर्दे में सुख मिलेगा, कभी कोई लड़का पसंद आ जाएगा कभी कोई लड़का पसंद आ जाएगा। हाँ तो आपको लगता है कि मिट्टी में ही सुख है, वो भी एक मिट्टी का मुर्दा है और आप भी मिट्टी के पुतले हो, दो मिट्टी के पुतले अगर कुछ भी करेंगे तो उसमें आपको सुख कैसे मिलेगा, आप तो ट्रांसेंडेंटल उसके लिए चूर हो। तो कोई कारण ही नहीं रहना था एक संयमित जीवन जीने का, एक साफ जीवन जीने का, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। इसलिए और कलयुग का प्रभाव भी इसलिए देखा जाता है कि शादी के बाद भी बहुत अफेयर रहते हैं, उसके विवाह से पहले भी, क्योंकि कोई कारण ही नहीं है कोई भी सही प्रकार से जीवन जीने का, कोई कारण बनता ही नहीं है इस संसार में सुख, तो जिस भी प्रकार से मिले करो, हु केयर्स, बता दो प्रभु जी को बता दो कि तो भी हमें डर मारोगे, हमें से बोलते घर में व्यवहार को बता दो। अरे नहीं भी बताओगे तो भगवान को जो बैठे उनको उनको पता नहीं चलेगा क्या, जो आप तोड़ोगे तो भी वो जान रहे हैं, बताना चाहिए वाली बात तो मत बताओ, उससे क्या होगा, वो दूसरा बेवकूफ व्यक्ति घर का वो भी चोर, एक चोर दूसरे चोर को कह रहा ठीक है मैं ठीक करूं नहीं बताऊंगा, बहुत बढ़िया, दोनों का क्या होगा, दंड मिलेगा। जो आप लोग साधन भक्ति कर रहे हैं चाहे विवाहित हैं जो अविवाहित हैं कि दीक्षा होगी आज नहीं तो कल, भगवान कृष्ण से वास्तविक रूप से जुड़ेंगे हम परंपरा के अंदर, जो कोई दीक्षा का कोई गोल नहीं है, कोई जुड़ने का गोल नहीं, तो माला क्यों करेगा जब भगवान से जुड़ना ही नहीं है, हम सुख चाहते हैं और बिना भगवान से जुड़े, एक कमाल की बात है, हम सुगंध चाहते हैं बिना फूल के, अरे फूल मिलेगा तो सुगंध तो मिल ही जाएगी, हम पंखा चलाना चाहते हैं बिना बिजली कनेक्शन से, अरे देश से कनेक्ट कर दो अपने आप आपको बिजली मिल जाएगी, ठीक उसी प्रकार से हम अपने आप को भगवान से जोड़े रखेंगे, इसे भगवान कहते हैं अनन्या चिंतन अनन्य भास्तव में से जुड़े रहो, मैं आनंद स्वरूप हूं और मुझसे जुड़े रहोगे तो हमेशा खुश रहोगे, ये साइंस है, भगवान कह रहे हैं मेरे से जुड़े रहो क्योंकि तुमको मिलेगा क्या, वो तो पूर्ण है अपने आप में, हमें मिलेगा जो मिलना है, हम उनसे जुड़े रहेंगे तो हमेशा खुश रहेंगे, हमेशा हमारा यही ख्याल है कि हम लोग एक दूसरे से सुखी सुखी होना चाहते हैं, हम खुद एकदम फ्यूज बैटरी है और एक और फ्यूज बैटरी के साथ जुड़ के मतलब एक और मिट्टी के पुतले के साथ जुड़ के हम सुखी होना चाहते हैं, कमाल है, पावर हाउस के साथ जुड़ जाएंगे तो अपने आप बैटरी चार्ज हो जाएगी कि नहीं होगी, हम लोग क्या चाहते हैं एक फ्यूज बैटरी दूसरे फ्यूज बैटरी सुखी सुख होना चाहती है, बच्चा सोचा माँ बाप सुख मिल जाएगा, माँ सोचे बच्चे से, लड़का सोचा लड़की सुख मिल जाएगा, लड़की सोचती है लड़के से, कमाल की बात है, सब फ्यूज बैटरीज है, सुख कैसे मिले लोगों को दिखाइए, भीख मांग रहे पैदा हो गई, सुख चाहिए आनंद चाहिए, पैदा हो गए रोना शुरू, आनंद कहा आनंद कहा, तो कुमार को देगा क्या जो उसके पास ही नहीं है, यही कारण है संसार में लड़ाई है, सेल्फ क्लैरिफिकेशन इज द कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन दिस मटीरियल वर्ल्ड, केवल इंडियन व्यक्ति ही एकमात्र कारण है कि संसार में लड़ाई होने का, हजर लाइफ में क्यों लड़ाई होती है, वो चाहते कि मैं निर्दृति करूं वाइफ चाहती है मैं करूं, कृष्णा सेंटर मेरी लाइफ है, उसी प्रकार से दो परिवारों में क्यों लड़ाई होती है, वो चाहते हैं मुझे ज्यादा मिले, संसार में सुख है मुझे नहीं मिला इनको मिल रहा है तो मुझे मिलना चाहिए, दो देशों में लड़ाई क्यों होती है, इनको नहीं मिलना चाहिए ज्यादा मुझे मिलना चाहिए, बस मूल बात यह कि संसार में सुख है और वो मुझे ज्यादा मिलना चाहिए किसी भी कीमत पे, और हम लोग अपने आप को रिश्तेदार बोलते हैं मानते हैं, हम अपने आप रिश्तेदार इत्यादि मानते हैं और गलत राय देते रहते हैं और उसका परिणाम क्या होता है कि हमारा जीवन भी खराब होता है और हमारे डिपेंडेंट का भी, हमारे जानकारों का भी, सबका, तो हमको जानना चाहिए और हमें समझना चाहिए कि जो भक्ति है उसी से सुख मिलेगा, भक्ति कहां से मिलेगी, अपने आप मिल जाएगी भक्ति कैसे मिलेगी, गुरु भगवान भक्ति जो है वो कृपा से मिलती है, भगवान के भक्तों से मिलती है, भक्ति का मूल है साधु संघ, भक्ति मूल है साधु संघ, साधु संघ भक्ति का मूल है, भक्ति मतलब कृष्ण का मूल है। कृष्ण कैसे मिलेंगे? साधु संघ से। भक्ति कैसे मिलेगी? साधु संघ से। इसका तीसरा मतलब क्या है? आनंद कैसे मिलेगा? साधु संघ से। तो सुखी होना चाहते हो तो कैसे होंगे? साधु भक्तों के साथ रह के सुखी होंगे। अब आप चाहे कितना भी अच्छा होगा सुखी नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि उनसे आपको कृष्ण नहीं मिल सकते। कृष्ण आपके हैं, आपकी संपत्ति, आप किसी को भी चाहो दे दो तो कृष्ण आपकी संपत्ति, मतलब आनंद आपकी संपत्ति है। तो हम आनंद चाहते हैं तो केवल साधु के पास है, हमारे पास नहीं है, हमारे मम्मी पापा पत्नी बच्चों किसी के पास नहीं है। हम लोग इसलिए सुख चाहते हैं ना मम्मी पापा पत्नी धन संपत्ति से, उनमें तो किसी के पास आनंद है ही नहीं, तो वो क्या देंगे आपको? इसलिए साधु संघ अति आवश्यक है। और माया हमेशा खेल खेलती रहती है कि सही साधु का संघ ना मिलता है। जैसे आपको सही साधु का संघ मिल जाएगा सब कुछ हो जाएगा। तो माया भिन्न भिन्न प्रकार के मन में कंफ्यूजन उत्पन्न करती है। नहीं नहीं तुम्हारी मम्मी को प्रसन्न करो, मत जाओ यहाँ, मत जाओ वहां, मत जाओ, पापा को प्रसन्न करो, बच्चों को, भाई को, बहन को। इस प्रकार माया भिन्न भिन्न प्रकार के खेल खेलती है। क्योंकि साधु से जुड़े मतलब भगवान से जुड़ जाओ, साधु क्या देगा? भगवान का ज्ञान देगा। तो ये प्रसाद है पूरे सर्व आशा, भगवान के भक्त कृपा से प्रसाद से सारी आशाएं पूरी हो जाएंगी सुख की। आशा सिर्फ सुख के लिए की जाती है, तो सुख की सारी आशाएं अपने आप पूरी हो जाएंगी। हम सोचते हैं कई बार अच्छे कपड़े पहन के खुश हो जाएंगे, खासकर आज शादी का सीजन है। हाँ, तो ये वही सारे मान लो ये जो लकड़ी का डब्बा है इसको आप खेत से सजा लो तो क्या होगा? इसमें इसमें कुछ होने वाला है क्या? इसको आप 5 लाख के कपड़े पहना लो, इसको 20 लाख का हीरा पहना लो, उससे क्या होगा? पत्थर कोई भी इसको पहना लो हैंगर को कुछ, इसको क्या होगा? हमारा शरीर क्या है? यही तो है, जैसे वो लकड़ी का डब्बा, जैसे ये हैंगर, वैसे हमारे शरीर मिट्टी। मिट्टी का जैसे मैं सजाते हो आपको कुछ नहीं होने वाला, चाहे कोई भाई की शादी हो चाहे किसी की शादी हो। लोग बोलते हैं कितना खुशी होकर नाचते कहते हो, हाँ मिट्टी के पुत्रों की शादी में नाच देते हो तो हम तो भगवान का नाम लेकर ही नाचेंगे क्या? जिससे वास्तव में हमें भगवान भाव के नाम में कोई भेद नहीं है। तो नेचुरल है कि जो भी सही रूप से भक्ति में जुड़ा वो अपने आप नाचेगा भगवान का नाम लेते ही। नहीं नाचेगा तो हमारे को डिजीज है, तो हमें समझना चाहिए कि हम लोग अभी काफी बीमार हैं। कि ह्यूमन लाइफ इज सक्सेसफुल व्हेन वन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द लॉर्ड, मनुष्य जीवन तभी सफल माना जाता है जब भगवान उसे रिकॉग्नाइज करते हैं। रिकॉग्नाइज मतलब जब भगवान किसी चीज को पहचानते हैं तो मनुष्य जीवन सफल माना जाता है। वन शुड ट्राई टू बी रिकॉग्नाइज बाय द लॉर्ड, हमें प्रयास करना चाहिए कि भगवान हमें रिकॉग्नाइज करें, हमारे को जाने। हमको इस प्रकार से आचरण करना चाहिए, ना कि पशु की तरह आचरण करना चाहिए कि भगवान हमारे कभी भी नहीं जानेंगे। हमें कुछ करना पड़ेगा कि भगवान हमारे को जाने। कृष्ण शुड रिकॉग्नाइज दस, वी हैव टू डू समथिंग। कि जिस प्रकार से दफ्तर के अंदर डिपार्टमेंटल हेड के नीचे काफी सारे लोग होते हैं, डिपार्टमेंटल हेड जो बात बताता है वो बात मानते हैं वर्कर्स, तो कुछ समय बाद वर्कर्स की प्रमोशन हो जाती है, ऊंची पे मिल जाती है। जिस प्रकार डिपार्टमेंटल हेड है वो अपने आप में सुप्रीम नहीं है, परंतु उनकी प्रसन्नता पर्याप्त है आपकी सफलता के लिए। इसी प्रकार से हम जिस भी भारत के संरक्षण में है और भारत हमें जो सेवा प्राप्त होती है, जिस प्रकार से डिपार्टमेंटल हेड के द्वारा सेवा प्राप्त होती है, तो हमें वो सेवा प्राप्त होती है और सही रूप से करते हैं। देन कृष्णा इज गोइंग टू रिकॉग्नाइज अस, दिस इज द ओनली वे आउट। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग दुखी होते हैं जब कोई हमारे घर में भक्ति कर रहा होता है, दुखी हो जाते हैं। ये ज्यादा भक्ति करिए, ये आज के कुछ समझा के रखो, ये बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा जाती है, इधर उधर क्लासों में जाती है। अच्छा, जब कृष्ण जीवन में आते हैं तो आपको दुख होता है, और जब दुर्गा में आना होता है तो हमें दुख होता है, जबकि ये सुख के कारण है। और जब वृंदावन से जब अक्रूर जी आए थे और भगवान श्री कृष्ण को लेके जा रहे थे मथुरा की ओर, तो जो भक्त थे वो फेंट हो गए थे। जब कृष्ण जीवन से जा रहे थे तो फेंट हो जा रहे थे, शक्कर गोरी से बिल्कुल काले हो गए थे, फेसेस टर्न ब्लैक एंड दे फेंटेड। किस वजह से? कृष्ण हमारे जीवन से जा रहे हैं। और ये गंदे संसार में क्या होता है, गंदे रिलेटिव, गंदे माँ बाप सब, अगर कृष्ण हमारे जीवन में आ रहे होते हैं तो वो फेंट हो जाते हैं, उनका फेस काला पड़ जाता है, सूख जाता है मुंह। क्यों? कृष्ण के जीवन में क्यों आ गए? किसी कीमत पे भी नहीं आने चाहिए थे इनके जीवन में। तो कृष्ण हमारे जीवन में आए, खुशी का विषय है एकमात्र। बाकी आपके जीवन में चाहे कोई भी आ जाए, शाहरुख खान आए, अमिताभ बच्चन आए, बिल गेट्स आए, कोई भी आए, वो दुख का विषय है। गोवर गणेश लोग हमारे हृदय में आएंगे तो गंदा हृदय और गंदा हो जाएगा, उनका हृदय मलिन है। और गंदे लोग हृदय में बिठाएंगे तो हम और गंदे हो जाएंगे और हमारा मृत्यु क्यों, हम और अग्रसर होंगे। तो हमारे बात अच्छी तरह समझनी चाहिए, चॉइस अब हमारे पास है कि हम क्या चुनना चाहते हैं। माया अपनी ओर आकर्षित कर रही है, काम 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 मेरे पास सुख है, और कृष्ण अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, काम 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 मैं सुख स्वरूप हूं। चॉइस हमारे पास है, माया की ओर जाएंगे माया दास सदा उदास, हमेशा उदास रहेंगे, और भगवान के पास जाएंगे तो हमेशा खुश रहेंगे, साधन दान में भी और सिद्धि की अवस्था में भी। भगवान ने गीता में बताया सुख सुखम कर तो मध्य, अगर हम सही रूप से भक्ति कर रहे हैं, चाहे नए भी हैं चाहे आपको दो महीने भी हुए हैं, तो अगर हम सही रूप से भक्ति कर रहे हैं तो हमारा सुख बढ़ता रहेगा। इसमें संदेह मत कीजिएगा, ये गोल्डन बात समझ लीजिए। ये नहीं है कि जब आप और शुद्ध भक्ति की अवस्था में पहुंचोगे तो सुख मिलेगा, नहीं। सुख सुखम कर तो मध्य, ये अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है, अत्यंत सुखपूर्वक पद पे खुद सुख बढ़ता रहे, बढ़ता ही रहेगा अगर सही रूप से भक्ति कर रहे होंगे तो। हमारा हम दुखी रहते हैं माला करने के बाद भी, यही सबसे बड़ा रीजन है, प्रत्यक्ष है कि हम भक्ति सही रूप से नहीं कर रहे। ये भगवान कह रहे हैं अगर भक्ति सही कर रहे हो तो सुख सुखम कर तुम अव्ययम, हर पद पे आनंद बढ़ता जाएगा। और भौतिक संसार के बारे में क्या कह रहे हैं कृष्ण उत्तम गीता में, नित्य आरती देना वित्तेना, नित्य नित्य मतलब हमेशा, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, हमेशा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में क्या होगा, आरती, आरती मतलब दुख। नित्य आरती देना वित्तेना, जो संसार की संपत्ति है इससे हमेशा दुख प्राप्त होगा। संसार की कोई भी चीज कामना करते हैं तो दुख प्राप्त हो, किस किस काल में, जब आप उसके प्राप्त करने की कोशिश करोगे, जब प्राप्त कर लोगे और जब आपसे चला जाएगा, हमेशा दुख प्राप्त होगा। आपको उदाहरण दे, जो हमारा समय आता है धन, धन कमाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, गले की तरह काम करना पड़ता है, सुबह से रात तक फैक्ट्री में, कोई चांदनी चौक में, और कोई कहां गए और कोई कहां गए, तो गला भरना पड़ता है सबसे पहले धन कमाने के लिए। उसके बाद मेंटेन करें, हाय 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 खर्च ना होना चाहिए, खर्च जो बेहतर होना चाहिए, और कई गलती से खर्च हो जाए तो तार से निकल जाते हैं, हाय 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 3 लाख का नुकसान हो गया, 3 लाख हाथ से जा रहा है, जीवन हाथ से जा रहा है ये नजर नहीं आ रहा है, हाँ 2-3 लाख हाथ से जा रहे ये नजर आ रहा है, कितनी बार मर चुके वो नजर नहीं आ रहा। और उसके बाद नित्य आरती देना, कमाने में दो, पालन मेंटेन करने में दो, पर खर्च हो जाए तो जान ही निकल जाती है। फिर तो उसी प्रकार से अगर शादी करनी होती है तो पहले तो पैसा इकट्ठा करना पड़ता है, शादी में पैसा खर्चा होगा, उसमें जो हो जाए तो उसके बाद सब जानते हैं प्रत्यक्ष अनुभव है, फिर दुख, उसके बाद भी दुखी दुख है। तो संसार की कोई भी संपत्ति, कोई भी वस्तु जो है प्राप्त, साधन काल में भी दुख मिलता है, प्राप्त होने के बाद भी दुख मिलता है, और भविष्य, इसका मतलब है नित्य नित्य आज संसार की सारी वस्तुएं हमेशा दुख देंगी, हर अवस्था में, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। आपके जीवन की और अवस्था भी होती है क्या, चौथी अवस्था नहीं, हाँ तो इन 3 अवस्थाओं में दुख मिलेगा जरूर, हर समय। कितने दुखी रहते हैं हम लोग, क्यों, यही बेवकूफ कि संसार की संपत्ति बंटवाने की कोशिश कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं सुख सुखम कर, ये हमेशा सुखपूर्वक किया जाता है और ये हमेशा दुखपूर्वक, और हम इतने बुद्धिमान है ठीक दुखपूर्वक की ओर जा रहे हैं सुखपूर्वक, और ये भी देख रहे हैं कि जो सुखपूर्वक भक्ति कर रहे हैं वो हमेशा सुखी रहते हैं, और ये हमेशा फिर भी इसी ओर आकर्षित हो रहे हैं, बिल्कुल पशु अनकंट्रोल्ड माइंड, सब कुछ दिख रहा है, हजारों करोड़ों रीजन है कि एक ही काम करो, और क्योंकि हम पशु हैं इसलिए हम अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं, पशु नहीं बदल सकता ना अपने आप को, तो हम अपने आप को नहीं बदले तो हम पशु से एक और टीशर्ट बना लो, आई एम एन एनिमल, और वो रोज पहन के हम जाएं, शायद कोई शर्म आ जाए किसी को, नहीं हम कहते पढ़े लिखे हैं एजुकेटेड हैं, खा के एजुकेटेड हैं हम लोग। एजुकेशन का मतलब है राइट और रॉन्ग, गुड और बैड के बीच में डिफरेंस पता चले, सही क्या है, गलत क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, क्या सुख देगा क्या दुख देगा, इसे कहते हैं एजुकेशन। ये एजुकेट शब्द से आया है एजुकेशन। हम लोग अभी एजुकेट नहीं हो रहे हैं, हम तो अभी लिटरेट हो रहे हैं, साक्षर हो रहे हैं। साक्षर तो नहीं, साक्षरता बढ़ रही है संसार में, और वो भी बढ़ रहा है साथ में राक्षसता भी। राक्षस के संसार में बहुत हो रहे हैं क्योंकि साक्षर हो रहे हैं बिना भगवान को लिए। तो गुड और बैड के बीच में डिफरेंस ही नहीं पता, सुख और दुख के बीच में डिफरेंस ही नहीं पता, और भाग रहे हैं सुबह से रात तक, फटाफट खाना खाए, गाड़ी में बैठे बैठे खाना खाए, फिर ऑफिस गए, रात को आए, फटाफट टीवी देखा, खाना खाया, सो गए, अगले दिन फिर वही किया। भाग रहे हैं सुबह से रात तक गले की तरह, भगवान बोले जा रहे भाई गले की तरह भाग रहे, तो गले ही बन जाओ डायरेक्ट, ऑफिस जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर अगले जन्म में। तो भगवान जी हमारे को पशु योनि में डालते हैं, हमारे ऊपर सजा नहीं है, हमारे को हमारा जॉब आसान कर रहे हैं। तुमने क्या करना है, इंद्रिय तृप्ति, तो ऑफिस जाने की क्या जरूरत है, कपड़े डालने की क्या जरूरत है, बैंक की क्या जरूरत है, मैं तो पशु बना देता हूँ, खुले ना करो, कोई रिस्पॉन्स, कोई रेड लाइट पर नहीं रुकना, कोई बिल नहीं जमा करवाए, जो मर्जी करो। तो अगर हम अनियंत्रित इंद्रिय भोग करना चाहते हैं तो हमें पशु योनियां प्राप्त होंगी। ह्यूमन लाइफ इज नॉट फॉर सेल्फ ग्रेटिफिकेशन, इट इज फॉर सेल्फ कंट्रोल। हमें बात को बिठाना पड़ेगा, नहीं तो हमें बहुत कष्टों से अभी गुजर रहे हैं, आगे भी हमारा स्टेम करते हैं, जो ट्रेलर चल रहा है आप सबका, आने वाली जो जोड़ियां जो प्राप्त होंगी उस पर पता नहीं क्या होने वाला है। ये तो कितने दिन का है, 4 साल 70 साल, और कई बार करोड़ों साल बीत जाते हैं, मनुष्य जीवन प्राप्त नहीं होता, करोड़ों साल, कई बार कई कई युग बीत जाते हैं, मनुष्य जीवन में कोई ऐसा पता नहीं होता। तो बहुत दुर्लभ अवसर है अपने आप को जानने का, वैष्णव की तरह जीने का, सुखी होने का, अपने आप को शुद्ध करने के काफी उपाय हैं, पर सबसे श्रेष्ठ भगवान बता रहे हैं मत मिथ्या आत्मानं शौचम। शौचम समझते हैं, साफ करना, कैसे साफ होते हैं, मत मिथ्या, मेरा स्मरण करके आत्मानं, आत्मा पवित्र होती है, हम पवित्र होते हैं। मेरा स्मरण करने का मतलब मेरा स्मरण, मेरे रूप का स्मरण, मेरे धाम का स्मरण, मेरे नाम का स्मरण, मेरे भक्तों का स्मरण। तो इन सब पर जब हम स्मरण करते हैं अच्छे लोगों का, तो हम पवित्र होते हैं। और हम गंदे लोगों का स्मरण करें, अपने माता पिता जो भक्त नहीं है, अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो भक्त नहीं है, अपने जिनके अफेयर है नहीं है, बच्चे, चाचा चाची, बुआ मासी, सबके सब जो भक्त नहीं है, उससे गंदा रहे और गंदा हो जाएगा, ऑलरेडी बहुत गंदा है और गंदा होगा। ये तो हम सब मानते हैं कि संसार में दुख मिल रहे हैं, माया हमारी दोस्त है कि दुश्मन, दुश्मन है माया, हमारी दोस्त है, दोस्त है। क्यों, एक जीव एक भगवान, एक माया एक जगत, एक भगवान और एक जीव। तो माया बार बार दांत मार रही है, मेरे पास सुख नहीं है, जा इधर, नहीं है जा इधर, नहीं है जा इधर। तो माया हमारी दोस्त है, हमारी दुश्मन नहीं है,
माया दोस्त है, रोजी हम खुद अपने दुश्मन,
हम अपने दुश्मन है। माया तो दोस्त है, माया भगवान की शक्ति है, वो हमारे को अनेक प्रकार से सीख दे रही है कि बेटा मेरे पास सुख नहीं है, इधर जा, मैं मेरे पास नहीं मिलेगा जो तुझे चाहिए, इधर जा इधर जा। तो माया हमारी दोस्त है, वो हमारे को भगवान की ओर भेज रही है। अभी सोचिए इतने दुख मिल रहे हैं तो हम भगवान की ओर भी जा रहे हैं, तो हमारे घर में थोड़ा सुख होगा तो हमारी क्या हालत होती, हम तो अरबों जगह में भगवान के पास में जाते, कभी मंदिर टूटे फूटे जो मंदिर आते हैं वो भी ना आते। अभी तो हमारी मम्मी हमारे को प्यार नहीं करती, हमारा पति हमारे को प्यार नहीं करता, बहन प्यार नहीं करती, इतनी प्रॉब्लम है तो हम नहीं आते, तो सुखी सुख होता तो कहां से आते। इसलिए देवता जो है मनुष्य जीवन की कामना करते हैं कि अच्छी खासे दुख मिलते हैं, तो फिर इनपेट अपने कि जाओ भगवान की ओर। देवजीवन में नहीं है ऐसा सुख, देवजीवन में सुख ही सुख है, तो कारण ही समझते क्यों जाऊं, ना मैं बीमार हो रहा हूं, ना मेरे को दुख मिल रहा है, ना टॉयलेट जाना पड़ता है, ना कुछ, सब कुछ बच जाता है, तो कोई कारण ही नहीं है व्यक्ति को भगवान के पास जाने का। इसलिए प्रार्थना करते हैं देवतागण कि हमें मनुष्य जोड़ी दें। इस संसार में हम चाहते हैं सब लोग हमारे अनुसार चले, इस संसार में हम सब लोग चाहते हैं कि हमारे अनुसार लोग चले, हम क्या चाहते हैं, एवरी वन शुड फॉलो मी, शुड गो एज पर माई विल, हर एक को मेरे अनुसार चलना चाहिए, हर वस्तु को मेरे अनुसार, मेरे लिए भोग के लिए बनी है। हम ये सोचते हैं चाहे माने चाहे ना माने, मानेंगे अच्छी तरह आंखें बंद सोचिए, इस संसार में सब कुछ जो है क्या क्या, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश गाड़ियां बंगले सूर्य चंद्रमा सितारे ज्वेलरी कपड़े सब कुछ मेरे भोग के लिए बने, मानते हैं कि इस बात को? सब मेरे एंजॉयमेंट के लिए बने हैं, मानते हैं कि इस बात को? आप हो क्या संसार में? सब कोई तारे आपके एंजॉयमेंट के लिए लटके हुए हैं, सूर्य आपके एंजॉयमेंट के लिए आता है, कोई कारण नहीं है, कोई सृष्टि का कोई उद्देश्य नहीं है, बस आप एंजॉयमेंट करो तो उसकी पसंदता के लिए सूर्य सुबह सुबह आ जाता है, आपकी पसंदता के लिए चंद्रमा सुबह आ जाते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इस सृष्टि का एक पर्पस है और ये सारी सृष्टि जो है, जैसा हमने पहले भी बताया है, दिस इज एन इंग्रेडिएंट टू सर्व द लॉर्ड, ये भगवान के भोग के अर्पण करने की वस्तु है सारी सृष्टि, इसमें हमारा अधिकार। सो वी डोंट इवन हैव अ राइट टू टेक अ ब्लेड ऑफ ग्रास फ्रॉम दिस मटीरियल वर्ल्ड। घास का तिनका लेने का भी अधिकार नहीं है अगर हम भक्ति नहीं कर रहे तो। घास का तिनका, और हमने तो कितनी चीजों को अपना माना हुआ है, कितनी चीजों को हम सोचते हैं कि सब मेरे अनुसार चले, मेरी बहन मेरे अनुसार चले, मेरी मम्मी मेरे अनुसार चले, मेरा सब मेरे अनुसार चले, हम यही सोचते हैं। और मैं किसी के अनुसार न चले, मैं भगवान सर्वत्र देव देवा सर्वदेव नमस्कार, मैं भगवान हूं, सब लोग मेरे अनुसार चले। चैतन्य भागवत में बताया गया है वृंदावन दास ठाकुर के द्वारा कि एवरीथिंग इज वेरी इंटीमेटली रिलेटेड टू द लॉर्ड, सारे संसार की वस्तुएं जो हैं उनका भगवान से बड़ा गहरा बड़ा निकट का संबंध है, बहुत निकट का संबंध है सारी वस्तुओं का। एवरीथिंग एंड एवरी वन, हर एक जीव का भगवान के साथ बहुत गहरा संबंध है, बहुत गहरा। गहरा संबंध होने का क्या मतलब है? कि भगवान से जुड़ा हुआ है तो हमारे को हर एक से किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए कि वो भगवान का बहुत निकटतम व्यक्ति है, और भक्ति में लगाना चाहिए हर एक को। हम क्या चाहते हैं कि लोग मेरी इंद्रियों की प्रीति करें, पति क्या चाहता है? पत्नी मेरे भोग के लिए बनी है। भैया आप कृष्णदास हो और आपकी पत्नी कृष्णदासी है, इस बात को समझना पड़ेगा। जैसे सेल्फ सेटिस्फेक्शन बीच में आता है तो हम ये भूल जाते हैं कि सब वो भगवान से बहुत निकटतम संबंध है, तो फिर क्या जाता है? मेरे भोग के लिए। इसका मतलब होता है कि भगवान को अर्पण करने के लिए वो वस्तु थी तो उसको मैं डायरेक्ट भोग करता हूँ। सोचिए ऑल्टर में ले जाया जा रहा हूँ भोग, कोई राक्षस आ जाए उसे मैं भोग करूंगा, मैं खाऊंगा, भोग मतलब ये भगवान के लिए नहीं है, मेरे लिए है, ये बात नहीं तो मेरे लिए है, लीगली वैलिड है। अच्छा, ऐसा नहीं होता। एवरी वन इज वेरी इंटीमेटली रिलेटेड टू द लॉर्ड, बहुत ही निकट का संबंध है भगवान से, हर चीज का, हर वस्तु का। और यही है परिभाषा वासुदेव कुटुंबकम की, ये सब कुछ जो है वासुदेव का परिवार है, भगवान श्री कृष्ण का परिवार है, सबके सब जो है परिवार है। क्या मतलब है? कि जो मुखिया है उनसे बहुत ही निकट का संबंध है, तो हम सबका भगवान से बहुत निकट का संबंध है, हमारी पत्नी का, हमारे बच्चों का, सबका। तो सब वस्तुएं जो है वो भगवान के भोग के लिए है, मेरे भोग के लिए नहीं है। तो ये संसार हमें यूज करना है भक्ति के लिए, संसार को अपने हृदय में बचा के नहीं रखना। ये थोड़ी देर के लिए हम यहां पे आए, टूर पे आए हैं, समझ लीजिए, मेरे चाहते हैं काम कीजिए, वापस घर जाइए, सड़क के खास होना छानते रहेंगे अरबों जन्म तक। अब तो सब कुछ प्राप्त हो चुका है, अब क्या जानना श्रेष्ठ रह चुका है, कुछ बचता ही नहीं है। भगवान की कृपा करके सब कुछ सुस्पष्ट प्राप्त हो चुका है। और कई बार गलत सोच सकते हैं, नहीं जी मेरे मन में तो बहुत कामनाएं हैं, मैं धन चाहती हूँ, मैं एंकर बनना चाहती हूँ, मैं प्रिंसिपल बनना चाहती हूँ सीए, और धन कमाना चाहता हूँ, जो भी है, तो मेरे को तीव्र भक्ति नहीं करनी, ये धीरे धानी मेरी, मेरे लिए धीरे धानी भक्ति ठीक है। आता है मन में, अभी मिलते हैं, मेरे साथ छोड़ना होने को बोलते ना आप लोग, शब्द इतना छोड़ना हमने करना है। अच्छा, पवान कुछ और बताना चाहते हैं, इस लोग आप सब लोग जानते हैं, अकाम सर्व काम होगा मोक्ष काम उदार भी तीव्र भक्ति होगी ना जजेत पुरुषम पर। अकाम आपकी कोई कामना ना हो, सर्व काम आपकी बहुत सारी कामनाएं हो, संसार में यश चाहते हो, पोजीशन चाहते हो, धन चाहते हो, स्त्री चाहते हो, पुरुष चाहते हो, तो और मोक्ष की कामना तो भी क्या करो, तीव्र भक्ति होगी ना, तीनों कंडीशन में काम एक ही करो, पर तुम क्या तीव्र भक्ति होगी ना, तीव्र गति से भक्ति के अंदर प्रगति करो, तीव्र गति से। तो मैंने वो कंडीशन अप्लाई की हुआ, दैट इज नॉट द क्राइटेरिया, तीव्र ना, इन्हीं तीनों में से कोई कंडीशन होगी, बहुत कामनाएं, कोई कामना नहीं, या मोक्ष की कामना। तो क्या बोल रहे भगवान, हर स्थिति में तीव्र भक्ति होगी ना, क्योंकि तुम हर स्थिति में वास्तव में सुख चाहते हो, और सुख तो सुख स्वरूप से जुड़ के ही मिलेगा, आनंद स्वरूप से जुड़ के ही, रस या एवायम लब्धवा, उनको प्राप्त करके, वो प्राप्त नहीं होंगे तो सुख प्राप्त नहीं हो सकता, वो प्राप्त होंगे तो ही सुख प्राप्त होगा। भगवान की प्राप्ति कोई फ्यूचर का चेक नहीं है। अगर ढंग से भक्ति कर रहे हो तो आप अपने जीवन में आनंद बढ़ता हुआ खुद फील करोगे, प्रत्यक्ष फील करोगे। कहीं सड़क पर जाकर सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं भक्ति में आगे बढ़ रहा हूं ना। वास्तव में अगर खुश हो रहे हो भक्ति तभी ढंग से कर पा रहे हो, नहीं तो दुखी इसीलिए हो क्योंकि अपने अनुसार चलते हो। भगवान तो अपने भक्तों के अनुसार चलते हैं और हम लोग भगवान से भी बढ़ गए हैं कि हम किसी के अनुसार नहीं चलते। भगवान इस संसार में संतों को इसीलिए भेजते हैं कि मेरी बात ये भूल चुके हैं, तुम जाओ इन्हें मेरी बात याद दिलाओ। और जहां जो भक्त लोग आ रहे हैं केवल कान सुन के लाभ नहीं होगा, जैसे सेवा में जुड़ते हैं तो बहुत अच्छा है एक प्रकार से, कोई कोई प्रसाद बना के ला रहा है, इंद्रियां सब इस्तेमाल हो रही सेवा में तो शरीर का शुद्धिकरण हो रहा है, उसके बाद ये सुनेंगे तब ये चीजें ज्यादा लाभ देंगी। तो जो भी भक्त होते हैं सेवा में जुड़े रहेंगे तो ज्यादा अच्छा है। जीव को स्वामी कहते हैं अगर ऐसा नहीं कर रहे उसको फिर साहित्य करके अपराध बताया गया है कि हमें केवल ऐसा नहीं बैठ जाना चाहिए कि सिर्फ हम तो हीरिंग एंड चैंटिंग के ऊपर हम लोग जैसे अकिंचन बाबा लोग रहते हैं, हम लोग ऐसे को कर नहीं रहे हीरिंग चैंटिंग और जलपा और पता नहीं क्या क्या, तो हमारे को साथ में प्रैक्टिकली फिजिकल सेवा में भी जोड़ना चाहिए, उससे हमारा शुद्धिकरण होगा। और अभी हमारे मन में संसार के भागने क्यों चाहते हैं, क्योंकि हमारे मन के अंदर भी बहुत सारे पुराने संस्कार हैं, पुरानी डिजायर्स हैं। तो कैसे प्योरीफाई होगी, सबसे श्रेष्ठ माध्यम क्या है, भगवान के बारे में सुनो, श्रवण करो, हियरिंग, और ध्यान पूर्वक भगवान के नाम का जप करो, इससे हमारी शुद्धि होगी। हियरिंग कीजिए ज्यादा से ज्यादा, सबसे श्रेष्ठ उपाय हियरिंग कीजिए। अगर हियरिंग करेंगे करते रहेंगे तो एक ना एक दिन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे, बहुत जल्दी। हियरिंग पे जोर दीजिए, लाइव सुनने का मौका मिले सुनिए, नहीं सुन सकते एमपी3 किसी ने भी सुनिए। हम सब बहुत अच्छा एक्सप्रेशन दिया गया है कि हम इतने मूर्ख हैं, जैसे मान लो आप खाना खा रहे हो, आपको अचानक पता चल जाए आपके सर के ऊपर एक 6 फुट की तलवार लटकी हुई है, तो आप पीसफुल खाना खा सकते हो? हम सारे काम वैसे ही कर रहे हैं, मृत्यु की तलवार हमारे ऊपर लटकी हुई है, किसी भी क्षण आएगी खत्म, सब खत्म, मिस्टर भाटिया फैक्ट्री खत्म, मिस्टर गुप्ता फैमिली खत्म, आप कहीं जाओ, आपकी यात्रा यहीं तक थी, बहुत बहुत धन्यवाद हरे कृष्णा। अन्य संडे वाले इनके पंचना भी एंथुजियास्टिक इन मटेरियल लाइफ, जब उनकी फादर नहीं है पूरी तरह तो एंथुजियास्टिक और पीसफुल इन मटेरियल लाइफ, मृत्यु सर के ऊपर खड़ी हुई है और हम पीसफुल ही क्रिकेट मैच देखते हैं, कमाल की बात है। ये आपने निश्चित किया होगी आज के दिन तो आप नहीं बनने वाले, तभी तो देखते हो मैच ना, आज थोड़ा बनना है, आज तो पूरा सुबह से रात तक जमकर से बैठू, आज थोड़ा मैंने मरना है, या सबकी अपना अपना सोचने का तरीका है। ये मनुष्य जीवन है या कोई भी जीवन है, अगर हमारे को संसार में जीवन प्राप्त हो इसका मतलब पता क्या है कि जहर दे के हमारे को खिला के हमारे को भेजा गया है, अब बस ये पता चल रहा है कितने दिनों में मरना है, बस जहर सबको मिला हुआ है, जहर मिलेगा मतलब क्या है, मरना है, अब कितने दिन है ये खेल देखना है सिर्फ, बाकी आने में फ्यूचर परफेक्शन जल्दी क्विकली। हम लोग कई बार माया इतनी प्रभावशाली है कि हम पद से भ्रमित हो जाते हैं, परंतु फिर से ज्ञान को अगर हम जीवन अंगीकार करेंगे तो पुराने स्तर पर फिर से वापस आ सकते हैं। भक्ति कठिन नहीं है, सिर्फ साधुओं की आवश्यकता है, अगर साथ में रहेंगे तो हमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता, अकेले रहते हैं इसी से हम लोग दुखी होते हैं। जो भगवान के सखा होते थे, जो भगवान के साथ रहते थे, तो हमेशा दो रहती थी, अहम पूर्वम, मैं कृष्ण को पहले छूंगा, मैं कृष्ण को पहले छूंगा, तो हमारे अंदर यही होना चाहिए कि हाँ यही संकल्प होना चाहिए कि मैं कृष्ण को प्राप्ति करूंगा, मैं कृष्ण की प्राप्ति करूंगा, तो संकल्प लेना चाहिए यहाँ पे अहम पूर्वम, मैं भगवान की ओर पहले अग्रसर होऊंगा। तो आज का जो बताने का उद्देश्य था सत्र का, ये था कि जो भगवत तत्व है नंबर एक, एकमात्र ज्ञान का यही द्वार है, नंबर दो ये विज्ञान है, ये साइंस है, इसे कोई भी चाहे तो चेंज नहीं कर सकता। इतिहास में आज तक कभी भी कोई सुखी हुआ है तो भगवान की भक्ति करके ही हुआ है, और जो अभी तक सुखी लोग हो रहे हैं वो भी ऐसे ही हो रहे हैं और भविष्य में भी कोई नया उपाय आने की कोई उम्मीद नहीं है। तो हमारे को अपना जीवन जीने का तरीका बदलना चाहिए ताकि हम अभी भी सुखी रहें और आने वाला जीवन हमारा सुखमय हो। हम यही कामना तो करते हैं नैवेद्य पूजा में, क्या करते हैं इंद्रिय तृप्ति की वस्तुओं को अगले जीवन में यही देना, क्योंकि हमको लगता है इंद्रियों से हमारी संतुष्टि हो जाएगी, तृप्ति हो जाएगी। अरे इंद्रिया तो होती ही नहीं कितने समय तक, तो तृप्ति हर बार हमारा जीवन होता है 9-10 मिनट तो हम तीनों मकड़ों के साथ रहते हैं गर्भ के अंदर, हजारों कीड़ों के साथ। हर बार मनुष्य जन्म में यही होता है। आप बोलते ना मेरी उम्र 29 साल है, आज मैं 29 साल का हुई हूँ। सीमा जन्मदिन है आपका 29 साल की हुई, या जो भी 26 साल की या 22 साल की, नहीं 22 साल 10 महीने के, इन 10 महीने गर्भ के बाद में गिनेंगे आप तो तभी आ गए थे। 22 साल 300 दिन पहले आए हैं, जितना हम सोचते हैं ना हमारे बर्थडे है उससे 300 दिन पहले आए हैं हम लगभग। और हमारे भाई कीड़े मकोड़ों के साथ हम बहुत रहे हैं, सब उदरह बताया गया है तीसरे स्कंद में, एक ही उदर से दोनों आए हैं तो दोनों भाई हैं एक तरीके से, कीड़े मकोड़े बैक्टीरिया सब। कई बार भक्त लोग प्रश्न ये कर लेते हैं कि भाई कभी तो बात हमें बता दिया बस क्या करें, पुरानी आदतें हैं या डिटर्मिनेशन नहीं आती। बात ठीक है, होता है प्रश्न डिटर्मिनेशन नहीं आती। डिटर्मिनेशन क्यों नहीं आती है, देखो अगर भक्ति ढंग से कर रहे हो तो आनंद बढ़ता जाएगा, और जिस चीज में आनंद बढ़ता रहेगा वो आप करोगे ही करोगे। अब क्या चाहते हो, आनंद खुशी, तो अगर भक्ति ढंग से कर रहे हो तो आनंद बढ़ता जाएगा। क्योंकि हम अपराध कर रहे हैं, क्योंकि हम प्रजल्पा करते हैं, कई वो मेरे को लिखित में आता है आई एम रेगुलर इन प्रजल्पा, क्योंकि खुशी की बात बोलना है तो रोने की बात है कि मैं बहुत रेगुलर प्रजल्प कर रही हूँ, ये तो कोई अक्लमंदी की बात नहीं है। इसका मतलब ये कि आप अच्छे खासे रास्ते में जा रहे थे, स्पीड ब्रेकर आया, इतने छोटे वाला नहीं इतने बड़े वाला, जितना ज्यादा प्रजल्पा अपराध उतना बड़ा स्पीड ब्रेकर, तो करोड़ों जन्म लग जाएंगे कई बार स्पीड ब्रेकर को पार करते, और दुख भी मिलेगा साधन काल तब तो दुख भी मिलता रहेगा, फल तो देना ही चुकाना ही पड़ेगा ना। तो अगर भक्ति ढंग से कर रहे हैं तो सुख होते ही रहेंगे, तो डिटर्मिनेशन क्वेश्चन ही नहीं आएगा कभी भी, डिटर्मिनेशन नहीं आ रही। डिटर्मिनेशन इसलिए नहीं आ रही क्योंकि हम अपराध कर रहे हैं, ढंग से फॉलो नहीं कर रहे, क्योंकि ये पद पर सुखम है, अत्यंत सुख पर संपन्न चढ़ा जाता है। जो भी भक्ति करता है ढंग से उनका फेस अलग होता है, वो खुश रहते हैं हमेशा, हम दुखी रहे हैं तो हम सही तरह कर नहीं रहे हैं। तो हमें संरक्षण में रहना चाहिए और जानना चाहिए हाउ टू डू भक्ति। भगवान हम कैसे रिकमेंड करेंगे हम भक्ति करेंगे, भक्ति करनी कैसी है इसके लिए बहुत शिक्षा की आवश्यकता है। ये नहीं बोला भगवान कृष्ण ने कि आप दीक्षा ले जाना आपकी भक्ति हो जाएगी अपने आप, नहीं। दीक्षा लेना एक स्टेप है, फिर उसके बहुत कुछ और सीखना है हमें, तो सीखेंगे हम तो हम भगवान को दर्शन कर पाएंगे। देखिए अब इनिशियल लेवल पे कंपैरिजन किया गया है कि एक पानी का जलाशय, जलाशय समझते हैं ना, तो पानी का एरिया थोड़ा सा पॉन्ड मान लीजिए, जो पॉन्ड है वो काफी जल्दी दूषित हो जाता है, ठीक बात है, पर जो बहुत बड़ा लेक होता है वो दूषित नहीं होता, जब वो उसके अंदर कंटेमिनेशन आता है तब भी दूषित नहीं होता। ठीक उसी प्रकार से हम छोटा सा जलाशय है, जरा सा संसारी बाहर की चीजें आती है तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा फिजिकल एसोसिएशन में रहें, यही हमारे को एकमात्र तरीका सेव करने का। मैं ज्यादा मेटीरियल संग में रहूंगा तो माय स्पिरिचुअल लाइफ इज गोइंग टू बी डिस्ट्रॉयड, ये कन्विक्शन होना चाहिए। इसलिए जरूरत से अधिक नहीं रहना, जितना आवश्यकता है बस उतना ही रहना है। कोई मेटीरियल दोस्त वगैरह होने से किसी को सुख नहीं मिला आज तक, हमें सबको पता है सब स्वार्थी हैं, ऐसा नहीं कि हमें पता नहीं है, सब स्वार्थी अच्छी हम तक उसे जानते हैं। और मैं एक परिवार को जानता हूँ, जैसे मानो कि घर में सब भक्ति में लग गए, तो उनका जो एक लड़का था वो हॉस्टल से आया और वो बड़ा दुख हो गया, भाई मेरे मम्मी पापा भाई बहन सब भक्ति में लग गए हैं। तो लड़का आया तो अपने रिश्ते में सामने रोया बहुत, वो लड़का रोया, रोने के बाद वो कहता है कि भाई मामा मासी ये सब तो भक्ति में चले गए हैं, ये तो मेरी तरह है ही नहीं। तो वो सब उनके सारा खानदान जो है सब कृष्ण भक्ति में लगे हुए हैं, सब जप करते हैं, वो इतने अहंकार व्यक्ति हैं, वो कहते हैं कि सब सेल्फिश हो गए हैं, सब मेरी और मेरी तरीके से नहीं चल रहे, तो मैं सोच रहा था इसे प्रेम कहा जाता है। प्रेम मतलब किसी के अनुसार चलना, आप चाहते हो सब लोग आपके अनुसार चले, तो ये प्रेम है क्या? आप तो भगवान बनना चाहते हो, अपने अनुसार सबको चलाना चाहते हो। अगर उसको प्रेम होता अपने माँ बाप से, किसी भी लड़की को या किसी लड़के को अपने माँ बाप से प्रेम होता, भाई बहन होता, तो सब लोग एक और चल रहे हैं, तुम नहीं चल सकते हो, सब तुम्हारा सारा खानदान एक और चल रहा है, पर तुम अलग और चल रहे हो। ओके, कहते हो मैं जेंटलमैन हूं, मैं लिटरेट हूं, मैं तो सेल्फलेस हूं, आप ही सेल्फलेस हो। तो बड़ा दुख होता है देख के, हर वजह से कहीं लोग मर जाता है कोई, हाय 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 हाय, मेरा क्या होगा, ये नहीं बोलते बेचारे उसका क्या होगा, वो चला गया। आज तक मैंने किसी के मरने में नहीं सुना कि उसका क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरे को छोड़ के चला गया। इसलिए रो रहे हो ना, इतने सेल्फिश हो, प्रूव कर रहे हो हर बार, किसी के मरने में चले हो देखो, हाय 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 मेरा क्या होगा, सेल्फिश है। बच्चे रो गए हैं, माँ बाप मर जाए, मेरा कौन मेरे को खिलाएगा रोटी, पैसे कहां जाएंगे, बच्चे ऐसे रोते हैं, और फिर बच्चे की मृत्यु हो जाए, हाय हाय हाय, फिर वो मेरे को बुढ़ाते का लाठी कौन बनेगा। किसी को चिंता नहीं है कि वो नर्क गया है, स्वर्ग गया है, भगवत धाम बाहर में जाए, वो मेरा क्या होगा। आपने कभी सुना है किसी के मरने पे कि उसका घर कहाँ गया, पता नहीं भगवत धाम गया होगा कि नहीं गया होगा, क्या होगा, भगवत धाम चले तो काम ही हो गया, मैं कहती हूँ मेरा क्या होगा। इतना गंदा संसार है, सारे लोग भेड़िए की तरह है, हमारा भक्षण करने का प्रयत्न कर रहे हैं, और हम ये बात जानते हैं, मानते नहीं है, हम अपने वही माता पिता रिश्तेदारों से संतुष्ट करने में जीवन बर्बाद कर रहे आ रहे हैं अपना। वो भेड़िया को प्रसन्न करना चाहते हैं हम लोग, जानवर समान व्यक्ति, सिर्फ पांच चार नहीं होते हैं, पूरे जानवर ही। भेड़ियों के बीच में रहोगे सुखी रहोगे, दोस्त भी भेड़िए, सब भेड़िए, गंदे लोग, बच्चे भी भेड़िए, हम माँ बाप है ना, बच्चे वगैरह, कोई बच्चा तो भेड़िया है बिल्कुल। हम भगवान को छोड़ देते हैं, तथा करें बच्चे माँ संसार को रिश्तेदार को छोड़े तो भेड़िए के समान है, सोचिए। और फिर हम जीवन में सुख की अपेक्षा रखते हैं। भागवत में 11वें स्कंध में बताया गया, मनोगति न विसृजेज, ये जो लक्ष्य है मनुष्य जीवन का, इसे कभी नहीं भूलना चाहिए, इसका विसर्जन कभी नहीं करना चाहिए। जो लक्ष्य है, जो गोल, हमेशा याद रखना चाहिए, मैं यहाँ थोड़े दिनों के लिए आया हूँ, इन भेड़िए के समाज से निकलने के लिए आया हूँ, अगला जीवन नहीं चाहिए हम भेड़ियों के साथ, भेड़िया या भेड़िया टाइप लोगों के साथ नहीं रहना है। ये गुड और बैड है, ये हमारे द्वारा निर्धारित नहीं होता है, ये भगवान के द्वारा निर्धारित होता है कि क्या गुड है और क्या बैड है। जो चीज हमें पेश व्यक्ति से नहीं जोड़ती वो बैड है, चाहे हमारा रिलेटिव हो, चाहे फ्रेंड्स हो, चाहे मनी हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे हस्बैंड हो, चाहे किड्स हो, जो व्यक्ति से चीज नहीं छोड़ती वो बैड है। आप उसकी नई परिभाषा नहीं खड़ी कर सकते, भावों के तात्पर्यों की बातें हैं, सिर्फ रिपीट कर रहे हैं। मैं सिर्फ माउथ पीस बना हूँ, जैसे ये माउथ पीस है ना, मैं भी किताबों शास्त्रों का माउथ पीस बनकर सिर्फ बता रहा हूँ, नो एडिशन। मैं पूछ रहा हूँ भक्ति धन धन को डर लगता है, मैंने लक्ष्य निर्धारित करे मैंने वो नहीं पूरे कर पाऊंगा, बेवकूफ हो तुम, तुमने उल्टे सीधे लक्ष्य निर्धारित करे हुए हैं, उसको छोड़ो, भगवान को लक्ष्य बनाओ अपने जीवन का। मैंने लक्ष्य बनाया, मैं ऐसे उसके बाद ये करूंगा, उसके बाद ये, मतलब इस तरीके से दुखी होगा उस वक्त, इस तरीके से दुखी होगा उस वक्त, और नए तरीके में अगर दुखी होने के। देखिए अगर साइंस है ना, कि अगर हमारी इच्छा पूरी नहीं होगी तो हम दुखी होंगे, मान लो अगर एक इच्छा पूरी नहीं हुई तो दुखी, मान लो 100 लोगों की इच्छाएं पूरी नहीं है तो उतना ज्यादा हम अपने आप को रूम दे रहे हैं दुखी होने का, जितनी ज्यादा इच्छाएं उतने ज्यादा दुखी। असमारे साइंस है ना, इच्छा पूरी नहीं हुई तो दुखी, एक इच्छा भी सफिशियंट है आपको दुखी करने के लिए, कि मेरे बच्चे को रिस्पेक्ट नहीं करते, मेरी पत्नी मेरे अनुसार नहीं चलती, मेरी बहन मुझसे प्यार से बात नहीं करती, मेरे पापा मेरी, एंडलेस एक चीज भी बहुत ज्यादा दुख करना है। हमने अनेकों जीवन हैं, अनेकों कामनाएं हैं, खाने की कामना, देखने की कामना, सुनने की स्पर्श करने की, जितनी कामनाएं बनाओगे उतना स्कोप है दुखी होने का। कामनाएं नहीं पाते तो कोई दुखी होने का स्कोप ही नहीं, उसे नहीं रिस्पेक्ट करी, हम चाहते ही तो उसे रिस्पेक्ट, तो हम दुखी होंगे। मैंने जूता मारेगा तो कोई बात नहीं, तो बाद में दुखी होना पहले से प्रिपेयर है, गुड प्रिपरेशन इज हाफ जॉब डन। پہلے دن سے پہلے ہاں ہو جائے گا تو کوئی بات نہیں. تو کامنا مطلب دکھ کو موٹا دینا, دکھوں کو ہم دعوت کو بلا رہے ہیں, اے دکھ آؤ دعوت دے رہا ہوں میں تمہیں, ہیو فیسٹ آن می مسٹر دکھ ایوری ڈے. کامنا مطلب دکھ مول لے لینا وہ بھی مفت میں. تو آنند کا مول کیا ہوا, آنند کا مول کیا ہوا, رول کاز آف ہیپینس بھکتی. بھکتی کا مول کیا ہے, سادھو سنگھ کا رول کاز آف آل ہیپینس اچھی طرح سادھو سنگھ میں نہیں ہوگا تو دکھی رہیں گے بس, چاہے فیکٹری کے اندر ہو فیکٹری کے باہر ہو, گھر کے اندر ہو گھر کے باہر ہو, کہیں پہ بھی ہو, بوائے فرینڈ کے ساتھ ہو نہیں ہو ہمیشہ دکھی رہیں گے. سادھو تو ہے نہیں تو دکھی رہیں گے. یہ باتیں ہم آپ کو اس لیے بتا رہے ہیں کیونکہ کلا سن کے ہمیں سمجھ نہیں آتا ہے سنسار کی سچائی, سنسار کی سچائی بتانی پڑتی ہے کیونکہ بھاگوت میں بتایا گیا ہے کہ کئی بار ہم لوگ جب جب بھکتی میں آگے بڑھ جاتے ہیں تو لیکن اسپونٹینیسلی اوائڈ سیلف گریفیکیشن, انڈیویجل بھکتی کو اسپونٹینیس نیچرلی نہیں کرتے جب بھکتی میں آگے بڑھتے ہیں. اگر نئی بھکتی میں آگے بڑھے تو کیسے کرنا چاہیے, سانکھے سروم بھاوانام, سب چیزوں کو سانکھے ویویچن کر کے دیکھنا چاہیے, ایویلویٹ کر کے, یہ واسطو میں سکھ دے گی میرے کو, یہ مٹی مجھے سکھ دے گا, یہ سنسار مٹی کا مجھے سانکھے لوگ, یہ سب سیلفش لوگ ہیں, سیلفش لوگ مجھے سکھ دیں گے, یہ مٹی کا جگہ مجھے آتما کو سکھ دے گا. تو سانکھے یوگ کے دوارا ہمیں سیکھنا چاہیے الگ الگ کر کے بائیفرکیٹ کر کے سنسار کے ایک ایک تتو کو, کہ میں سکھ ہونا سکھی ہونا چاہتا ہوں تو سکھ میں کیسے ہو سکتا ہوں, سائنس ہے. پلیز بھکتی کو سائنس کے روپ میں لیجیے, لائف بیکمز ویری ایزی. تھوڑا سا ڈیویٹ کریں گے سائنس سے, ڈیویشن ہے کہ ایسے ہوتا ہے روڈ پہ سیدھے جا رہے ہو تھوڑا سا ڈیویٹ کرو کچھ سمے بعد کیا ہوگا کہاں کہاں پہنچ جائیں گے, اور سیدھے چل رہے ہیں تو پروگرس ہوگی ہی ہوگی. ٹھیک ہے آپ سب کا بہت بہت دھنیہ واد, ہری کرشن.